ಕೈರಾರುವಿಂದೆ ನಪದಾರುವಿಂದೋ ಮುಖಾರುವಿಂದೆ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ ಪಟಾಶಿಪತ ಸಪುಟೇಶಯಾನೌ ಪಾದಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದೆ ಹರೆ ಮುರಾರೆ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ದಿವ್ಯ ಪಿವಸ್ವ ಮೃತ್ಯುಮೇತ ದೇವ ಗೋವಿಂದೆ ನಾಮೋ ಪರಿಮಾ
ಮಾಧುವೇತಿ ಕೈರಾರುವಿಂದೆ ನ
పదారవిందం ముఖారవిందే వినుబేసయంతం పటస్య పాత్ర సపుటేశయానం పాలం ముకుందం మనసామరామి.
గురు బృందావన్ బిహారీ లాల్ కీ, కృష్ణ కనయ్యా లాల్ కీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం, యత్ కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. యం ప్రభజంతమనుపేతమపేత కృత్యం ద్వైపాయనో విరహ కాతరయాజ్వావ పుత్రీతి తన్మే తయా తరుభూనిధూ తం సర్వభూతహృదయం మునిమాన తోష్మి. గురు కృష్ణ కన్హయ్యా లాల్ కీ జయ. నటవర నాగర నందా భజో మన గోవిందా,
నందా భజు రే మణి గోవిందా,
నటవర నాగర నందా భజు మన గోవిందా,
నటవర నాగర నందా భజు రే మణి
భజో
नित्य की भांति सर्वप्रथम शंकल मंत्र का उच्चारण करें। सभी लोग एक साथ में समन्वित होकर के शंकल मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सत,
ओम तत्सत,
द्वैतस्य
द्वैतस्य
ब्रह्मणो अह्नि द्वितीये परार्धे
परार्धे
श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वात्मन मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे
जम्बूदीपे
भारतवर्षे
भारतवर्षे
भरतखंडे
भरतखंडे
आर्यावर्तैक
आर्यावर्तैक
देशांतरगते
देशांतरगते
कीलकनाम संवत्सरे
कीलकनाम संवत्सरे
नाम का उच्चारण करते हुए बोले अमुक नाम नो हम
अमुक नाम नो हम
अमुक गोत्र उत्पन्नो हम
उत्पन्नो हम
साथ में गोत्र नाम का उच्चारण करके कहें अद्य सभी लोग बोले अद्य
मासाना
उत्तमे मासे
मासे
मार्गशीर्ष मासे
मार्गशीर्ष मासे
कृष्णपक्षे
पक्षे
एकादश्याम तिथौ
एकादश्याम तिथौ
रविवासरे
रविवासरे
महाराष्ट्रप्रान्ते
महाराष्ट्रप्रान्ते
मुंबई नगर्याम
मुंबई नगर्याम
श्री प्रेमपुरी आश्रमे श्रीमद भागवत सप्ताह श्रवणार्थम षष्ठम दिवसे द्वितीय उपस्थितौ विनियोगः अनेन श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्ट फल सिद्धि भगवत कृपा अस्तु श्री कृष्ण परमात्मा देवता प्रियंता इति जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नन्ननन्नन मुरली मनोहर एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह के अवसर पर आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में एवं जिनके निमित्तार्थ श्रीमद् भागवत सप्ताह पावन स्मृति में मनाया जा रहा है, ऐसी पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत सत वंदन। हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह के मुख्य यजमान के रूप में हमारी माननीय आदर की पात्रा माधुरी बहन ढोलकिया परिवार तथा अन्य समस्त यजमान वृंद श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के समस्त कुशल कर्मठ हमारे ट्रस्टीगण हमारे साथ में हरिद्वार से आए संगीतज्ञ वृंद आचार्य वृंद तथा प्रेमपुरी आश्रम का समस्त ट्रस्ट के कार्यकर्ता वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी भक्तिमती मातृशक्ति स्वरूपा माताओ एवं भगवान कृष्ण के रस के रसिक समस्त जिज्ञासु वृंद भगवत वृंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज आप लोग सप्तम दिवस की द्वितीय सभा में उपस्थित होकर भगवान की श्याम सुंदर नंदनंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर की पावन चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित भाव विभोर हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अब मैं शीघ्रातिशीघ्र उस मोक्ष तत्व के बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं। ध्यान देना, जिस साधक की साधना बहुत उत्कृष्ट होती है, बहुत महान होती है, उस साधक कभी मृत्यु से भय नहीं करता है। उसको तो एक आह्लाद होता है, एक प्रसन्नता होती है, आनंद की अनुभूति होती है कि अब मैं उस परम तत्व के पास, जो हमारा गेय है, जो हमारा प्राप्तव्य है, अपना हमारा अपना निज स्वरूप है, उस गे निज स्वरूप परम तत्व में अब मैं विलीन होने वाला हूं, अब उसकी मुझे उपलब्धि होने वाली है। ध्यान देना, चिंतन करना। परीक्षित महाराज अष्टम दिवस की पावन वेला में गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद की पावन कथा को सुन रहे हैं और बहुत आह्लादित हैं, बहुत हर्षित हैं कि अब हम उस तत्व में, जो परम तत्व हमारा प्राप्तव्य है, अंतिम गंतव्य है, जिस तत्व को पा करके न से पुनरावर्तते पुनः दुनिया में आना नहीं पड़ता है, हम उस तत्व की तरफ अग्रसारित होते हैं। ध्यान देना, जो योगी इति अमलात्मा महात्मा, जिसने अपना हृदय परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जो भगवान का बन गया है, वो कभी मौत से मृत्यु से डरता नहीं है। ध्यान देना, वो डरता नहीं, उसे तो प्रसन्नता है, वो हंसता है, आह्लादित होता है, उसके अंदर कोई भय नहीं है। ध्यान देना, विचार करना, मृत्यु भय का प्रतीक नहीं है, मृत्यु से भयान्वित न हो, भय न कीजिए। भागवत में लिखते हैं वेदव्यास जी महाराज, सुनो ध्यान से, श्रीमद् भागवत में लिखते हैं वेदव्यास जी महाराज कि प्राणा प्रयाण समये, प्राणा प्रयाण समये कफवात पीतई कंठावरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। प्राणा प्रयाण समये, जब प्राणों का प्रयाण होने वाला होगा उस समय कफवात पीतई ही, तैयारी पहले कीजिए, तैयारी पहले की जाए, तत्काल तैयारी नहीं होती है। ध्यान देना, तुरंत तैयारी नहीं होती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, जो पथिक जो यात्री गंतव्य के लिए यदि प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तैयारी नहीं करता है, वो चूक करता है, भूल करता है। ध्यान देना, भूल नहीं, चूक नहीं, सतर्क रहो, पल पल सतर्क रहो, सावधान रहो। मृत्यु से किस बात का भय, मरने से डरने का भय नहीं होना चाहिए। किस लिए डर और क्यों डर? ध्यान देना, एक बूंद सागर में मिलती है, ध्यान देना, एक बूंद सागर में मिलती है, उस बूंद को खुशी होती है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं उसमें समाहित होने जा रही हूं, मैं अपने रूप में मिलने जा रही हूं। जरा भला बताइए, जरा भला सोचिए, उस बूंद को क्या चिंता होगी, क्या कष्ट होगा? एक जो बिंदु है, ध्यान देना, का एक बिंदु है, क्या उसको शोक भय होगा सिंधु बनने में? ये भागवत का सार है, भागवत का निष्कर्ष है, ये भागवत का आश्चर्य तत्व है। सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति समुद्र में स्नान कर रहा है, सिंधु में स्नान कर रहा है, उसने उंजली में जल भरा, यूं उंजली में जल भरा, और उंजली में जला हुआ भरा हुआ जल एक बिंदु के रूप में लटका हुआ है। जल भरा है चुल्लू में, अंजलि में बिंदु लटका हुआ है। ध्यान देना, लटके हुए उस जल के अंश का नाम बिंदु है। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, जब बिंदु गिर जाता है, और उस जलराशि में समाहित हो जाता है तो उसका नाम सिंधु हो जाता है। फिर वो बिंदु बिंदु नहीं रहता है, वो सिंधु बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से है जीव जब स्वरूप को जान लेता है, भाव तत्व को समझ लेता है, तो फिर वो उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। परीक्षित महाराज को कोई भय नहीं है। भजन करो, चिंतन करो, सुनो ध्यान से, तन्मयतापूर्वक। परीक्षित महाराज को कोई भय नहीं है। सातवें दिन आने वाला हमें कोई चिंता नहीं। भगवान की भक्ति में मन को लगा दो। बड़ा सुंदर विवेचन आ रहा है, बहुत प्यारा विवेचन आ रहा है। सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, उसे उतारने का प्रयास करो। ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल परीक्षित की कथा नहीं है, भूल मत कर देना। श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, भूल मत कर देना। भगवान को कोई निमित्त बनाने पड़ता है। निमित्त मात्रम भव सभ्यचा साचिन। भगवान ने ब्रह्मा को वेद दिए, वो केवल ब्रह्मा के लिए नहीं दिए। कृष्ण ने गीता को गाया है, केवल अर्जुन के लिए नहीं गाया है। ध्यान देना, अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया, केवल जनक के लिए उपदेश नहीं दिया। कोई उपदेश सर्वांगीण होता है। उपदेश ज्ञान कभी व्यक्तिगत नहीं होता है। गीता व्यक्तिगत नहीं है, रामायण व्यक्तिगत नहीं है, वेद व्यक्तिगत नहीं है, दर्शन व्यक्तिगत नहीं है। वो सर्वांगीण है, समष्टि है, सभी के लिए है। उसको विशिष्ट रूप से कभी नहीं देखना। दर्शन को, शास्त्र को, भागवत को, गीता को कभी व्यष्टि परिधि में नहीं देखना। व्यक्ति के रूप में नहीं, समष्टि रूपेण। वह सबके लिए है, भागवत सबकी है। यदि आप ऐसा समझ रहे हो कि ये भागवत तो परीक्षित के लिए है, तो भूल कर रहे हो। यह गीता तो अर्जुन के लिए है, यदि ऐसा समझते हो तो भूल कर रहे हो। आप भ्रम में हैं। ये गीता आपके लिए है, ये रामायण आपके लिए है, ये दर्शन आपके लिए है, ये वैदिक साहित्य आपके लिए है, ये वेद आपके लिए है। इस भागवत को लो, समझो, हृदयंगम करो। ये मेरे लिए है, ये मेरी कथा है, ये कथा आपकी है और आपके लिए है, ऐसा समझिए। यदि आप इसको परीक्षित कथा मान लोगे, यदि आप परीक्षित की कथा मान लोगे, तो यहीं पर झाड़ के चले जाओगे। यहां तो आप बहुत सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे योग्य लोग हो, मेधा प्रज्ञावान मनीषावान हो। मैं समझता हूं यहां पर कोई अनपढ़ नहीं है, सभी शिक्षित हैं, सभी योग्य हैं, सभी प्रज्ञा मेधा मनीषा से समन्वित हैं। ध्यान देना, कई बार हमने देखा है देहातों में, गांवों में। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की बात मत समझना। लोग पल्लो झाड़ कथा सुनते हैं, कथा सुनेंगे यूं झाड़ देंगे उठने पर। किसी व्यास ने पूछ दिया, भैया पल्ला झाड़ क्यों कर रहा है, ये पल्ला क्यों झाड़ रहा है? इसलिए झाड़ रहा हूं कि महाराज आप बड़ी वैराग्य की बातें करते हो, और घर में चली गई, घर में चली गई तो बच्चे व्यापार छोड़ देंगे। बच्चे व्यापार, ध्यान दो, ये कथा आपकी है, आपके लिए है, मेरी अपनी है। जब आपकी कोई संपत्ति अपनी बन जाती है, ध्यान देना, जब कोई संपत्ति आपकी अपनी बन जाती है, घर आपका अपना बन जाता है, तो घर को साफ रखते हो, स्वच्छ रखते हो, पवित्र रखते हो, क्योंकि आपका अपना है। क्योंकि आपका, जब भागवत आपकी अपनी बन जाएगी तो प्रियता हो जाएगी। गीता को अपना कह दोगे तो प्रियता बन जाएगी। शास्त्र को अपना बनाओ। कहा गया है शास्त्रम ही लोचनम, ये शास्त्र आपकी आंख है। सुनो ध्यान से, भक्ति प्रेम से करो, माला प्रेम से फेरो, जाप प्रेम से करो, ध्यान प्रेम से करो। एक बात बहुत अच्छी आ रही है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात। अक्रूर जी महाराज ने भक्ति तो की है लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति है। अक्रूर शब्द का अर्थ होता है अक्रूर, न समास कीजिए, नक्रूरा इति अक्रूरा, जो क्रूर नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें छल नहीं है, जिसमें छद्म नहीं है, छल छद्म कपट से जो रहित है वही तो अक्रूर है, और वही कृष्ण से मिल पाता है। अक्रूर कृष्ण से मिले हैं तो छल कपट से रहित हुए हैं, ध्यान देना। अक्रूर तभी मिल पाए हैं जब छल छद्म कपट से रहित हो गए। कपटी आदमी, क्रूर आदमी, क्लेशी आदमी, विघ्न बाधाओं से, वासनाओं से संपन्न आदि भगवान से कहां मिल पाता है, ध्यान देना। अक्रूर का अर्थ होता है न क्रूरा इति अक्रूरा, न समास, जो क्रूर कपटी नहीं है वही तो अक्रूर है। ये अक्रूर की कथा, अक्रूर कह रहे हैं परिस्थितियां तो मेरे अनुकूल नहीं है, ध्यान देना। कई लोग बहाना बनाते हैं, महाराज भक्ति तो करना चाहता हूं, कथा तो सुनना चाहता हूं, मेरा भाव है सत्कर्म करना चाहता हूं, गंगा मैया नहाना चाहता हूं, तीर्थ में जाना चाहता हूं, अमुक करना चाहता हूं, पर क्या करूं महाराज, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। जब करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, पर परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अक्रूर कहते परिस्थिति अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी मैं भजन करता हूं, ध्यान देना। अपनी भागवत में अभी आपने दो दिन पहले चरित्र सुना था प्रहलाद जी का, प्रहलाद की परिस्थिति भजन के अनुकूल नहीं है। क्या है, प्रहलाद जी के सामने परिस्थिति भजन के अनुकूल नहीं है। रामायण को देखो तो रामायण में चर्चा आती है कि परिस्थिति विभीषण की भजन के अनुकूल नहीं है। महाभारत को देखो तो महाभारत में परिस्थिति भीष्म पितामह के सामने भजन करने के अनुकूल नहीं है। महाभारत में भीष्म की परिस्थिति प्रतिकूल है, भजन करने के लायक नहीं है। रामायण में विभीषण की परिस्थिति प्रतिकूल है, भजन करने के लायक नहीं है। भागवत में परिस्थिति प्रतिकूल, अक्रूर की प्रतिकूल है, भजन करने के लायक नहीं है लेकिन फिर भी भजन करते हैं, ध्यान देना। अक्रूर कहते हैं अरे मैं कंस का कर्मचारी हूं, कंस के यहां काम करता हूं, कंस का व्यक्ति हूं, तो इस तन पर कंस का अधिकार है, ध्यान देना। अक्रूर ने कहा इस तन के ऊपर कंस का पूरा अधिकार है। प्रहलाद ने कहा मैं हिरण्यकश्यप का अन्न खाता हूं, इस पर उसका अधिकार हो सकता है। विभीषण ने कहा रावण का अन्न खाता हूं, इस शरीर पर उसका अधिकार हो सकता है। भीष्म ने कहा मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं, तो शरीर पर अधिकार दुर्योधन को हो सकता है पर मन पे नहीं। पर मन पर, अरे भैया मन तो ये भगवान का है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, इसलिए इस मन को तो भगवान को दो। अक्रूर ने बोला, बड़ा सुंदर बोला। अक्रूर बोले अरे कंस तू तन को ले सकता है मन को नहीं। अरे दुनिया वालों, ये संसार के लोगों, सुनो ध्यान से, बड़ी प्यारी बात। अक्रूर ने कहा दुनिया वाले लोगों तुम तन ले सकते हो पर मन नहीं, मन तो भगवान का है। मन को दुनिया वालों को कभी भूल के नहीं देना। इस मन की कदर संसारी आदमी नहीं करता है। इसकी क्या कीमत है, इसका क्या अस्तित्व है, इसका क्या स्तर है, इस स्तर को, इसके महत्व को, इस मन की कीमत को इस संसारी व्यक्ति नहीं समझता है।
अक्रूर ने कहा है मेरे प्रभु दीन बंदातार, इस मन की कीमत तो केवल आप ही जानते हैं, इसलिए ये केवल अक्रूर नहीं कह रहे हैं, ये भगवान स्वयं कहते हैं। गीता का पन्ना पलटो, सातवें अध्याय में जाओ, बारहवें अध्याय में जाओ, अठारहवें अध्याय में जाओ, जब गीता को खोलोगे तो वहां गीता में भगवान कृष्ण बोलने लगे, अरे मैया शक्त मना पार्था, मई आशक्त मना पार्था, पार्था मई मना आशक्त, मई मुझमें मना मन को, मई एवं मना आदस्व मई बुद्धि में निवेशया निवसस्यसि मई एव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। अरे इस मन को तू मेरे में लगा, ध्यान देना। बड़ी सुंदर चर्चा, भाव से पकड़ो, हृदय से पकड़ो। भजन कोई भी कर सकता है। कुछ लोग बोलते महाराज घर का माहौल ठीक नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है, हमारे घर में तो सब उल्टी खोपड़ी के लोग रहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अरे भैया वो कहते हैं कहने दो, भजन तो मन की चीज है, भजन मन से होता, न कि तन से। तन उनके अनुसार चलाओ, मन भगवान के अनुसार चलाओ। नहीं समझे? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मन को भगवान में लगा दो और तन को संसार को दे दो। भूल नहीं करना, पुनरावृत्ति करता हूं कि इस मन की कीमत संसारी जानता नहीं है, पर भगवान जानता है। एक दिन किसी दिन देखना, आप आंख बंद करके पति के ध्यान में मस्त हो जाना और मन से रोटी बना करके कहो, पतिदेव आज बहुत भाव से मन से बनाई, आज मन की रोटी खाओ, तो क्या बोलेगा? खा लेगा, पेट भर जाएगा उसका। मन की सब्जी बना करके पत्नी को खिलाना, मां को खिलाना, किसी को खिलाना, उसका पेट नहीं भरेगा। वो क्या बोलेगा? अरे भैया मन से छोड़, तू तन से बना, हमारा तो पेट तन से भरने वाला है, मन से भरने वाला? हमारा पेट मन से नहीं भरेगा, मेरा पेट तो तन से क्रिया करोगे तब भरेगा। तो संसार के लोग तन से की गई क्रिया से प्रसन्न है, ये दुनिया के लोग कभी मन से की क्रिया से खुश नहीं होते, ये तो तन से। ध्यान देना, बात को समझो। अक्रूर महाराज ने कहा, अरे मेरा मन, मैं कंस का, कंस के पास रहता हूं, तन कंस का है, हे कृष्ण मन तेरा है, मन तेरा है। ध्यान देना हमारे प्रिय बंधुओं, मेरी माताओं, ये मन कृष्ण का है। सभी ग्रंथों को देखो, गीता में देखा, थोड़ा जाइए उपनिषद में तो वहां भी यही कहा जा रहा है, मन प्रग्रह में बचो, वहां भी मन की बात की है। कहीं भी जाओ, किसी ग्रंथ में झांको, रामायण को झांको, रामायण को देखो, तो वहां भी रामायण में कहा गया है, निर्मल मन जन सोही मोहे पाबा, निर्मल मन वाला ही मुझे पाता है। राम जी भी मन को मांगते हैं, कृष्ण जी भी मन को मांगते हैं, विष्णु जी भी मन को मांगते हैं। अरे किसी को देख लो, विष्णु पुराण को पढ़ लो, विष्णु जी ने मन मांगा है, भागवत को पढ़ लो तो कृष्ण ने मन को मांगा है, रामायण को पढ़ लो तो राम ने मन को मांगा है, सभी ने मन को मांगा है। सोचो ये मन क्यों मांगा है? ध्यान देना, भगवान मन ही मांगते हैं, तन कभी किसी का नहीं मांगते हैं। और मैं समझता हूं कि मन देना सरल है, मन देना नहीं, मन देना सरल है, तन देना कठिन है, क्योंकि तन के साथ में संसार का संबंध है। पति के साथ लामे फेरे लिए हैं, वो कहता है मेरा है, पत्नी बोलती तू मेरा है, पत्नी बोलती तू मेरा है, शादी करके लाया है, पति बोलता तुझे विवाह के लाया हूँ, तू मेरी है। अरे शरीर तेरा हो सकता है, मन से तूने शादी नहीं की है, मन से तो शादी गोविंद की हो गई है, मेरे प्रभु की हो गई है, मेरे श्याम सुंदर की हो गई है। मीरा ने शादी किससे कर ली थी? है? गिरधर से। मेरे तो गिरधर गोपार दूसरों न कोई। गिरधर के साथ में भले राणा से हुई प्रस्तुति बस, लेकिन उसने पति के रूप में गिरधर को ही स्वीकार किया। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। अक्रूर जी बोले, मेरा मन तो प्रभु आपका है। रामायण को देखो, गीता को देखो, भागवत को देखो, वेद से लेकर के प्राणों तक में मन भगवान का है। अरे सबसे बड़ा वेद है, और सबसे छोटा क्या है भैया? सबसे बड़ा तो वेद है, और हमारी धार्मिक पुस्तक सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी, छोटी से छोटी है? उसका नाम हनुमान चालीसा। क्या नाम? हनुमान चालीसा में भी कहा है कि निज मन मुकुर सुधार। अरे ये मन रूपी जो मुकुर है वो सुधार, तब तेरे मन के अंदर मैं आ जाऊंगा। तो भैया वेद पुराणों से लेकर के छोटा हमारा ग्रंथ हनुमान चालीसा तक ये मन की तो बात कह रहे हैं। सुनो ध्यान से, अक्रूर जी महाराज ने कहा है सो ये मन आपका, मन एक अंश मन तेरा हो सकता है, तन नहीं। बड़ी सुंदर बात है, बात को बहुत गहराई से समझो, गहराई से पकड़ो, गहराई से समझो, गहराई से पकड़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको ये लगेगा कि ये कथा मेरी है, ये कथा। और जब तक मेरी नहीं मानोगे रस नहीं आएगा। पड़ोसी कोई खुशल पुशल करता है और जरा भी मालूम पड़ जाए कि इस बात में मेरा नाम आया है, तो आप चौकन्ने होकर सुनोगे, क्या बुराई कर रहा है कि बड़ाई कर रहा है? नहीं, कान लगा के सुनते हो, अरे क्या मेरी बुराई कर रहा है कि बड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि आपका नाम आया है, आपका। यदि आप इसी प्रकार से भगवान की कथा अपनी मान लो, भागवत की कथा अपनी मान लो, तो क्या हो जाएगा? परिचित की तरह कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर बात, बहुत प्यारी बात। अक्रूर जी ने कहा कि ये मन तो ये श्याम सुंदर आपका है, किसी का नहीं हो सकता है। आज अक्रूर जी पूजा में बैठे हैं, बड़े हर्षित हैं। कभी पूजा में बैठ करके भगवान की छवि निहारा करो, अपलक होकर के भगवान के स्वरूप को निहारो, भगवान का श्रृंगार करो, पुष्पों के द्वारा, चंदन के द्वारा, अक्षत के द्वारा, कुमकुम के द्वारा भगवान के स्वरूप को सजाओ, और सजाने के बाद खूब प्यार से निहारो। हमारे गोपाल, हमारे गिरधर, हमारे कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। यदि आप भाव से, आह्लाद और प्रसन्नता से भगवान का मुख कमल देखोगे, दर्शन करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो गिरधर वो गोपाल आपको हंसते एक दिन नजर आएंगे, जरा करके तो एक बार देखो, आप झांक के तो देखो, इस भावना की गहराई में डूब करके, इन भावों में ओतप्रोत होकर के एक बार गिरधर को झांको तो तुमको लगेगा, महसूस करोगे। जब नन्हे मुन्ने बालक को आप देखते हो, वो बालक देख करके, अरे भैया जिस बालक से अभी अभी तुम्हारा संबंध हो रहा है, वो बालक आपको, आपकी मुस्की को, आपके हाव भाव को, आपके अंग प्रत्यंग के उस हाव भाव को, जो बालक अभी अभी मिला है, नया नया मिला है, वो समझने लगता है तो परमात्मा तो तुमको कब से मिला हुआ है? क्या अभी मिला है? क्या अभी से मिला है? ये परमात्मा तुमको कब से मिला है? ये दुनिया के लोग मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, पर परमात्मा तो वही है, परमात्मा तो
फिर भी हम शायद है कोई कोई नहीं समझ पाता है। आइए भक्ति में डूबिए और समझिए। अक्रूर जी महाराज भगवान की पूजा में बैठे बहुत आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, मस्ती आ रही है। उधर से सूचना आई, कंस ने समाचार भेजा अक्रूर को आना पड़ेगा, अभी तुरंत आना है। अक्रूर जी महाराज जब सभा में पहुंचे तो सभा में पहुंचते ही वहां घोषणा की गई, हुआ क्या कि नारद जी आए और नारद जी महाराज ने सारा काम खराब कर दिया। क्या खराब किया, क्या काम खराब किया? नारद जी का तो काम ही यही है, बनते को बिगाड़ दें, बिगाड़ते को बना दें। नारद शब्द का अर्थ है नारम, ज्ञानम ददात इति नारदा। किम नाम नारद, नारद किसे कहते हैं? तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को देता है वो नारद है। वो क्या है? वो नारद है। और कभी कभी ये नारद गड़बड़ भी कर देता है, ध्यान देना। जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, जो संसारी होता है, जो अल्प बुद्धि वाला होता है, ऐसी उस अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को भगवान से द्वेष रखने वाले को घुमा भी देता है, घुमा भी। नारद आए और नारद ने आकर के घुमा दिया कंस को। क्या घुमाया? देखो सुनो, सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित, जो बात अभी तक ढकी रही, जो बात अभी तक दबी रही, किसी को मालूम नहीं थी, वो आज जाकर के नारद जी ने कंस को बता दिया। क्या बताया महाराज? बतलाने की कृपा करो प्रभु। परीक्षित महाराज बोले, शुभ मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, मुझे बतलाने की कृपा करो भगवान। क्या 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 रहस्य खोला, क्या राज खोला? अरे कंस ने, कंस के पास जाकर के नारद ने कह दिया। बोले क्या कहा, क्या कहा? सुखदेव जी महाराज बोले, कंसाया था भगवान, कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शना, यशोदाया सुताम कन्या देवक्याम कृष्णमेव च रामम चारोहिणी पुत्रम और बलदेवेन बिभ्यता। कंस ने क्या किया? बोले कंसाया था, कंस के पास जाकर के नारदो देव दर्शना, उस नारद ने जाकर के कंस को बताया। क्या बताया? यशोदाया सुताम कन्या, यशोदाया, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, यशोदाया सुताम कन्या, अरे देवक्याम कृष्णमेव च, और देवकी ने कृष्ण को पैदा किया था, देवक्याम कृष्णमेव च, अरे रामम चारोहिणी पुत्रम, रामम च बलरामम च, बलरामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवे न बिभ्यता। वसुदेव ने भय से भ्रांत होकर के उस परमात्मा की लीला का संशास्त्र लेते हुए, आश्रय लेते हुए रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। जब कंस को मालूम पड़ा, अच्छा ये किया गया, ऐसा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा घात हुआ, हमसे अभी तक झूठ बोलते रहे, अरे देवकी के कृष्ण पैदा हुआ, यशोदा को कन्या पैदा हुई, और वो कैसे सातवां गर्भ, हमको बोला कि सातवां गर्भ गिर गया, और जबकि सातवां गर्भ रोहिणी के पुत्र पहुंचा दिया, उससे बलराम पैदा हुए, हमसे कितना बड़ा भेद रखा गया, हमसे कितना छल किया गया, हमारे साथ छल किया गया।
कंस को क्रोध आया, उठाई उसने तलवार और भागने को उद्यत हुआ कृष्ण को मारने के लिए गोकुल की तरफ। नारद ने कहा, अरे अरे ना समझ आदमी, तू ना समझी में काम खराब कर लेगा, मुझे लगता है तेरे में समझ कब आएगी, तेरे में सूझ कब आएगी, और तू समझता है तलवार लेके भाग के जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो भाग जाएगा। अरे अकल से काम ले, बुद्धि से काम ले, बुद्धि को संतुलन में रख, जल्दी ना गरमाओ, किसी बात में जल्दी मत उखड़ जाया करो, पहले बात पूरी समझो।
सुन समझे जन मुदित मन,
पहले सुनिए फिर समझिए, उसके बाद में चिंतन कीजिए, और चिंतन के बाद में निर्णय लीजिए। एकदम उबल मत जाओ, गर्म नहीं हो जाओ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति एक बार चिंतन करो, विचार करो, सोचो। जो व्यक्ति सोचता नहीं, चिंतन नहीं करता, वो घात करता अपने साथ में। नारद ने समझाया, हे ऐसा नहीं कर सकते आप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा आप बताओ क्या करें, ऐसा नहीं करो। अब सब बातें क्या मैं ही बताऊंगा? नारद ने कहा, अब सारी बातें मैं ही बताऊं तेरे को? तेरे मंत्री किस लिए रखे गए? ये तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? ये व्यवस्थापक है, व्यवस्था बताए। तूने मंत्री रखे हैं बुद्धि लेने के लिए, उनको पैसा दे रहा है, तो अब बुद्धि वो देंगे ना? मैं तेरे को मूल बात बता दी है, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। हमारी पूजा विश्व ब्रह्मांड है, मैं समझ के घूमता हूँ, एक के पास बैठ जाऊंगा व्यवस्था विश्व कैसे चलेगी? हमको विश्व को चलाना है, सभी को देखना है, इस विश्व में बहुत लोग, इस जगत में बहुत लोग हैं, मैंने सभी को देखना है। कंस, मैं चंपतरा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जरूरी बात मैं समझी में आ गया तेरे को बताने के लिए। नारद चरणों में, नारद जी के चरणों में कंस गिर गया। आपने बहुत बड़ी कृपा की नारद जी, बहुत बड़ी कृपा की। एक बार आपने मुझे उपदेश दिया था, वो कमल दिखा करके आज को गिनाया था, कोई आठवां बन सकता है, मैं आपका उपकारी हूँ, आपने बहुत अच्छी हमको शिक्षा दी, आज मैं फिर आपका उपकृत हो गया हूँ कि आपने मुझे रहस्य को बता दिया। चरणों में गिरा। नारद ने सोचा, आप भी सोच रहे होंगे महाराज ये तो बहुत गलत काम किया नारद ने, मन में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मन में आपके भी आ रहा होगा कि महाराज ये तो बहुत खराब काम कर दिया नारद ने, पर नारद तो महात्मा है, संत है, संत कभी काम खराब नहीं करता है, दिमाग से निकाल देना। ऋषि महर्षि योगी इति अमलात्मा महात्मा कभी खराब काम नहीं करते। नारद जी के प्रति ऐसा यदि आप सोचो कि काम खराब कर दिया तो गलत बात है। क्यों? नारद जी ने सोचा विचारा कि पापी को बहुत समय तक जीना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो उस पापी को, दुराचारी को, उस राक्षस को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। पापी रहेगा तो और पापी पैदा हो जाएंगे, एक पापी अनेक पापियों को पैदा करेगा। कितने से राक्षस पैदा कर दिए, कितने से राक्षस पैदा हो गए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, गलत व्यक्ति समाज में एक आ जाता है। ध्यान देना, समाज व्यक्ति एक गलत पैदा हो जाता है तो समाज को दूषित विकृत कर देता है। जल के अंदर एक गंदी मछली पैदा हो जाए, सारी मछलियां गंदी हो जाती हैं। किसी को एक संक्रमण रोग हो जाए, एक को टीबी हो जाए तो टीबी को फैलने में देर नहीं लगती है, डेंगू एक को हो जाए तो डेंगू फैलते घर में देर लगती नहीं है। ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। नारद जी ने कहा, पापी का रहना बहुत देर तक अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये राज खुलना चाहिए, और राज खुलेगा तो पापी जल्दी मरेगा। पापी, अब बताओ पापी को जल्दी मारो कि देर से मारो? हैं? जल्दी मारो। हमारा भैया बोला जल्दी मारो, पापी को मारने में देर नहीं करना है, क्लाश तुरंत खत्म करने का प्रयास करो। नारद जी ने वही किया, कोई गलत काम नहीं किया। नारद जी कभी गलत काम नहीं करते हैं, लोगों की सूझ है अपनी अपनी परिभाषा करने की,
बक्तुर इच्छा विवक्षा, बक्तुर इच्छा विवक्षा, उसकी क्या विवक्षा है, वक्ता की क्या इच्छा है, वो क्या बतलाना चाहता है, ये बक्तुर इच्छा ही वक्ता पर निर्भर करता है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। तुरंत एकदम कंस ने सभी मंत्रियों को बुलाया, अक्रूर को सूचना भेजी, जल्दी आओ, इमरजेंसी सभा है, मीटिंग है, जल्दी आओ। सभी के सभी मंत्री आए, सुझाव मांगा, बोलो इस ढंग की समस्या है, क्या करना है, कैसा करना। सब लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए। अक्रूर जी ने बहुत अच्छा मत दिया, सुनो देखो। राजनीति क्या, राजनीति भी एक ऐसा अंग है, ध्यान देना। आज राजनीति को लोगों ने बर्बाद विकृत बना दिया, राजनीति भी विकृत हो गई है, विकार आ गया है। राजनीति कैसी होनी चाहिए, ध्यान देना, इस भागवत में राजनीति भी है। समझिए राजनीति को, क्या राजनीति। विदुर जी महाराज ने से जब पूछा गया, विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज कंस नीति कहती है। बोले क्या कहती नीति। नीति ये कहती है कि शत्रु के पास जाकर के नहीं मारना है, उसको बुला के मारो। अपने घर में आते ही शत्रु का बल आधा समाप्त हो जाता है, आधा बल। कुछ समझ आई बात, नीति ये नीति है। भागवत के कई भाव होते हैं, आपको सच बताऊं, हम समय अभाव भाव में कह नहीं पाते हैं। शुरू में बैठते हैं, मुझे लगता है बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है, कहते जाओ, और जो जो टाइम बीतता जाता है त्यों तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बीत रहा समय। कभी खुले टाइम में आपको जरूर कथा सुनाएगी। हम एक श्लोक की व्याख्या घंटों घंटों कर सकते हैं। हमने अहमदाबाद नवरंगपुरा में कथा की थी और गीता का एक श्लोक उठाया था, उसको एक महीना चलाया। कितना चलाया, जो बात कही वो दोबारा नहीं बोली, एक महीना चलाया एक श्लोक। ध्यान देंगे, वहां के ट्रस्टी बोले, महाराज जी इतना लंबा खिंच गया। मैंने कहा भाई शब्दम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है, एक ही वाक्य की इतनी लंबी व्याख्या हो सकती है। आइए लौट के आइए, इसमें नीति भी है, ध्यान देना, इसमें राजनीति भी है, इसमें धर्म नीति भी है, इसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, इसमें पारिवारिक व्यवस्था भी है, इसमें अध्यात्म भी है, भागवत में क्या नहीं, बोलिए आप। सुलझा हुआ वक्ता होना चाहिए, यदि वक्ता सुलझा हुआ है तो भागवत के अलावा कुछ मध्य को इसमें सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी सुंदर बात अक्रूर ने कही, अरे कंस शत्रु को घर में जाकर के मारोगे तो जमेगा नहीं, अपने पास बुलाओ और तुम्हारे पास आ जाएगा, आधा उसका बल हो जाएगा, आधा बल हो जाएगा, निर्बल दुर्बल हो जाएगा, उसको दबाने में, सताने में, मारने में ताकत मिलेगी। एक आप और को बात बताऊं, आप सब व्यापारी लोग हैं, इतना बहुत बुद्धि रखते हैं, हमसे ज्यादा व्यापार में जो चालाक है, मैं तो महात्मा आदमी भोला भाला हूं, कोई जानता नहीं हूं। शास्त्रों में सुना, यदि कोई आपने व्यापारिक बात करनी हो तो उसकी ऑफिस में जाके मत करो, अपनी ऑफिस में बुलाओ। कोई उलझन है, कोई समस्या है तो अपनी ऑफिस के अंदर बुला के यदि बात करोगे तो आपके फेवर में रहेगी, अनुकूल में रहेगी। उसके पास जाकर के बात करोगे तो उलझन पड़ जाएगी। कोई समस्या आ गई अपने घर में, व्यक्ति को बुलाओ, समाधान करोगे तो जल्दी हो जाएगा। उसकी जगह पे जाकर के समाधान करोगे, अनुकूल नहीं पड़ेगा। आइए लौटिए, बहुत दूर चला गया। आओ लौटो। अक्रूर जी महाराज ने कहा, देखो ये नीति कहती है कि किस प्रकार से क्या करना है। कंस बहुत खुश हुआ, अक्रूर जी बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे आपकी बात बहुत भाई, मेरी एक हार्दिक इच्छा है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, मैं आपको बहुत अच्छा स्थान देता हूं, दिने बड़ी इज्जत करता हूं, आपके प्रति मेरे दिल में बहुत भाव है,
बहुत इज्जत करता हूं आपको, आपको बहुत मान देता हूं, इसलिए मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि अब आपने जो सुझाव दिया है कि घर में बुला के, तो बुलाने कौन जाएगा, हम आपको ही भेजते हैं कि आप जाइए गोकुल में जाओ और कृष्ण को लाओ, बलराम को लाओ। बोलो कैसे लाओगे? लंबी चर्चा है। बोलो कैसे लाओगे? चलो संक्षेप करता हूं। बोले मुझ पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। संक्षेप हो गया, खुद विस्तार कर दू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, विस्तार में भी नीति है, राजनीति है, बड़ी लंबी चौड़ी राजनीति की बात इस ग्रंथ में नहीं है। ये बहुत ग्रंथों का चिंतन है, क्या समझ रहे? ये बहुत ग्रंथों का चिंतन है, वो सब निश्चित हो रहा है, झरना चल रहा है, ये कोई टेबल का फिट नहीं है जो बज रहा है। ये सब शास्त्रों का झरना स्रोत्र प्रवाहित है, सबकी एक एक बात अपने आप आ रही है। ये आपको शार मिल रहा है, शायद आप उन ग्रंथों को न पढ़ सको, उनके आपको नाम भी नहीं मालूम, जहां की मैं बातें कर रहा हूं, जहां से बोल रहा हूं, आप उनके दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको उनका दर्शन वाक्य के रूप में करा रहा हूं, शब्दों के रूप में करा रहा हूं। ध्यान से सुनो, वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप में अक्रूर ने कह दिया कि मैं बोर नीति का भाव प्रयोग करूंगा, चिंता नहीं करो, मैं आप जो दायित्व सभा में कर लूंगा, मैं कर लूंगा। सभा समाप्त हुई, अक्रूर जी घर में आए, संक्षेप जाके भगवान की आरती की, सायंकालीन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माफ कर देना, मैं ऐसा ऐसा रचना रच के आया हूं, बोल के आया हूं प्रभु, और मैं कल सवेरे आ रहा हूं आपको लेने के लिए, हमको दायित्व सौंपा गया है आपको लाने के लिए, प्रभु मैंने गलत नहीं किया है। प्रार्थना कर रहे हैं गुरु जी अपने घर में भगवान से, हे मेरे गोपाल, हे मेरे गिरधर, हे मेरे बालमुकुंद, मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपनी सूझ से बहुत अच्छा किया, इस पापी को जल्दी मारना, जल्दी से जल्दी मारना है, ये जल्दी मरेगा तो पाप खलास होगा। ब्रज में बड़ी अशांति फैली हुई है, ध्यान देना है, न जाए उधर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज समाज के अंदर क्या समस्या है, आज समाज कितना विकृत हो गया है, समाज में कितनी बुराइयां फैल गई हैं, ध्यान देना, भ्रष्टाचार लीजिए, धोखाबाजी, बलात्कार, कई प्रकार के घोटाले देश में क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हमसे प्रकाश ने आग्रह किया था, स्वामी जी हम राजनीति में कुछ सुनना चाहते, वो आई नहीं है, अब सुन लेगा कैसे बजा के, अब सुन ही लेगा, इसी की जिज्ञासा तो शांत करनी पड़ती है। साधु का काम है किसी को प्यास लगी तो पानी पिलाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 राम। बहुत बहुत आई, एकदम लुटी जल्दी फटाफट एकदम आई भगवान के सामने। सुबह हुआ, सोने का रथ खड़ा हुआ है, अक्रूर जी बैठ गए रथ के ऊपर, और अक्रूर जी रथ पर जब बैठे हैं और वहां से चले हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग था भाव का, चलते तो उनकी स्थिति क्या होती, कितने वो भक्ति में डूब जाते हैं जब वो चले हैं, ऐसे ही कहता हूं सहज में, ये बहने वाली बात थी, खोने वाली बात थी, नहीं कह पाऊंगा आगे के प्रसंग, कोई नहीं बोल पाऊंगा, इसमें चला गया तो काम सब गड़बड़ा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उषित्वा रथमास्थाय प्राप्य उनंद गोकुलम। उषित्वा उषा काल, प्रातः काल मैं रथ आया, सोने का रथ है, बैठ गए, इसुत्ता रथ मास्ताया प्राप्तो नंद गोकुलम, और नंद गोकुल के लिए चल पड़ी। जब वो चलते हैं, अक्रूर जी चलते हैं, तो एकदम झांकी
आंख के सामने आई कि मैं अपने बांके बिहारी से मिलने जा रहा हूँ, नंदन से मिलने जा रहा हूँ। झांकी आई और एक झांकी का दृश्य बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। आंखों में झांकी घूम गई। अक्रूर जी कहने लगे, अद्र दक्षामि नूनम शुकपोल नाशकम स्मितावलोक कृणलुंजलोचनम मुखम मुखंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम वे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी महाराज ने जब मुखमंडल देखा, भगवान का आंखें बंद हो गईं, रथ पर बैठते ही एक बार तो घोड़ों की लगाम को खींचा और आंखें बंद। भगवान की छवि आंखों में आई और आंखों में आते ही मुखम मुकुंदस्य गुणाल कावृतम, मुकुंद भगवान का जब दर्शन सामने आया, मुखमंडल सामने आया भगवान श्याम सुंदर का, तो विवल हो गए और विवल होकर के उनके स्वरूप को झांकने लगे, रूप को झांकने लगे। मुखम मुकुंदस्य गुणाल कावृतम, क्या भगवान का दिव्य मुखारविंद है, क्या भगवान का दिव्य स्वरूप है। और उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके विवेचन कर रहे हैं। सुनिए, देखिए थोड़ा संक्षेप, भगवान का मुख कमल कैसा है।
बोले बरदंत की पंगति कुंदुकली, अरे बरदंत की पंगति कुंदुकली, अधर आधर पल्लव खोलन की, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधर आधर पल्लव खोलन की, और चपला चमकहीं घन बीच जगें, छवि मोतन मोल अमोलन की, छवि मोतन न मोल अमोलन की, बर जाऊं ललायन बोलन की।
आधा ही बोल रहा है, पूरा नहीं बोल रहा है, समय देखते हुए। बर जाऊं ला, ऐसा भगवान का स्वरूप है जो दंत की पंक्ति है। कैसी? घन बीच जगहें, घन माने आकाश। कभी कभी वर्षा के दिनों में बिजली तड़पती है तो एकदम आकाश में बिजली चमकती है। ऐसे ही भगवान का जो मुखार बिंद के अंदर दांत हैं, तो दांत इसी प्रकार से चमक रहे हैं। बर दंत की पंगत कुंद कली, कुंद जो कलियां होती कुंद की, जैसे कुंद की कलियां हैं, ऐसे भगवान की दाढ़े हैं, दंत हैं, बड़े प्यारे हैं। बर दंत की पंगते कुंद कली, अदर आदर पल्लव खोलन की, अदर जब खुलते हैं, ओठ जब खुलते हैं, तो उनकी झांकी का बड़ा विलक्षण दृश्य है। अदर आदर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच, घन के बीच में जब वो बिजली चमकती है। छवि मोतिन मोल अमोलन की, ओहो क्या भगवान का दिव्य स्वरूप है, विलक्षण रूप। तुरंत अक्रूर जी के भाव में डूब गए। सोचे कि जब मैं गोकुल पहुंचूंगा तो दौड़ के मेरे पास आएंगे और कहेंगे काका आ गए, काका आ गए। और जब उनके मैं चरणों में गिरूंगा तो अपना हाथ मेरे सिर पे रखेंगे, और जब मेरे सिर पे रख देंगे तो जिंदगी की जितनी भूलें हैं, ताप हैं, संताप हैं, सारे दूर हो जाएंगे। सारे ताप संतापों से मैं प्रच्छालित हो जाऊंगा, शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध हो जाऊंगा। बड़े अनंत भाव आ रहे हैं, अनंत भाव, कई भाव, बहुत अच्छे भाव हैं। आगे बढ़िए, वृंदावन बिहारी लाल की धनुषा सुंदर। सायंकालीन हो गया है, यद्यपि मुश्किल से मथुरा से गोकुल का रास्ता घंटे का है, लेकिन प्रातः काल उषित्वा रथमास्ताय, लिखा भागवत में उषित्वा रथमास्ताय, उषा काल में चले हैं, शाम हो गया है, संध्या का टाइम हो गया है, अब बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। कहां? गोकुल में। एक घंटे का रास्ता है, पूरा दिन लग गया। बोले क्यों? कि वो होश में नहीं थे, घोड़ों ने जहां जाना था वो जाते रहे, इधर उधर खास जंगलों में भटकते रहे, वो तो होश भी नहीं थे, कन्हैया में डूबे थे। शाम को जब रथ वहां पहुंचा, देखा वहां क्या सुंदर बढ़िया भगवान कृष्ण का, देखो लगता अभी अभी गायों को ले गए हैं घर में, चुंगा करके झूल के अंदर भगवान कृष्ण का चरण बना है, चरण को लेकर के नतमस्तक हुए, छलांग मार दी रथ से, उस धूली में लेट गए, धूली के अंदर लेट गए और लेट करके मस्त हो गए, और उस धूल को उठा के माथे पे लगाते हैं। ध्यान देना, किसी तीर्थ में जाओ, तीर्थ की रज माथे पर जरूर लगाना। तीर्थ की रज को, बालुका को घर में ला करके रोज नहाते हो, थोड़ी सी बाल्टी में डालो, थोड़ी सी स्नान करो तो गंगा स्नान का फल मिलेगा, नर्मदा स्नान का फल मिलेगा, यमुना स्नान का फल मिलेगा। जिस तीर्थ में जाओ इतना काम जरूर करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गौशाला में गए भगवान, शायद गौशाला में गए होंगे। गौशाला में गए, भगवान को देखा और भगवान ने देखा, भगवान भी दौड़ के आए और अक्रूर भी दौड़े। जो जो उसने संकल्प किया था अक्रूर जी ने, ठीक वैसा ही भगवान वो सब जानते रहे। भगवान ने उनको अपनी जेब में भर लिया है, हृदय से लगाया है, बाबा नंद के पास ले गए हैं। कुशल क्षेम पूछा है, ये संक्षेप करना पड़ेगा। क्या पूछा, कैसा पूछा, कभी देखा जाएगा। कुशल क्षेम पूछा है, रात्रि भर चर्चा हुई है, मथुरा के समाचार पूछे हैं, कैसे हैं वसुदेव जी अगैरे बगैरे। सुबह हुआ, पहुंचते ही मुनादी करा दी गई, सब समझा दिया, सारी बातें समझा दी। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ किया है और धनुष यज्ञ में चलना है, आपने भी चलना, ग्वाल बालों ने भी चलना है, सभी लोगों ने चलना है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं। प्रातः काल होते ही रथ तैयार करा दिया गया। कंस ने सोने का रथ भेजा है, मैंने भी सोचा है ये बालक अभी तक गांव में रहे हैं, शहर में जाएंगे, कुछ देखेंगे, इन्हें अच्छा लगेगा। रथ पर बैठ गए, रथ हांकना है, बड़ा अच्छा भाव था। गोपियों की क्या हालत होती है जब रथ चलने वाला था, क्या स्थिति होती है ब्रजांगनाओं की, बड़ी विलक्षण स्थिति होती है भैया। ब्रजांगना है, वहां कोई ब्रजांगना पहिए के नीचे लेट गई है, रथ के पहिए के नीचे किसी ने रथ को पकड़ रखा है, ऐसी विलक्षण स्थिति है। बाल बाल दौड़े, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। ब्रजांगनाओं ने कहा कैसे पागल हैं, कहां जा रहे हैं, कृष्ण को भी ले जा रहे हैं, आइए लौटिए। भगवान भी बैठे, बलराम भी बैठे, नंद बाबा भी बैठे, दही मटका वगैरह वगैरह भर लेते हैं और जाते हैं भेंट में देने के लिए। रास्ते में जमुना पड़ती है, अक्रूर जी स्नान करते हैं, भगवान का दर्शन होता है, मथुरा के आम के बगीचे में छोड़ देते हैं। अक्रूर अपने घर चले जाते हैं, भगवान कृष्ण घूमने को निकले हैं मथुरा, पहुंचा दिया मथुरा आपको मैंने। भगवान मथुरा घूमने पहुंचे हैं, अब मथुरा में भगवान जो है बोले बाबा मेरी इच्छा है हम थोड़ा मथुरा को घूम आए, मथुरा घूमने जाएगा, मेरी इच्छा है। देख उत्पात नहीं करना, ये गोकुल नहीं है, यहाँ का राजा कंस है, उत्पात करेगा तो दंड वही देता है, अपने घर में तो चलता था, तू कुछ भी कर, गोकुल नहीं है, मथुरा है, सावधान रहना, पिताजी चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने आप कुछ नहीं बोलूंगा, और कोई कुछ कहेगा तो थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, करना चाहता मैंने कुछ नहीं, समझाना है, अच्छा जाओ घूमाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया चलते हैं, कृष्ण बलराम गए, आगे बढ़े, जब आगे बढ़े नगर की बड़ी भव्यता है, बड़ी सुंदरता है, खूब सजाया गया नगर, धनुष यज्ञ हो रहा है, देखना सुनना, धनुष दो हैं, एक धनुष कंस के पास है और एक धनुष जनक के पास है। ये धनुष यज्ञ बुलाया गया है ना, एक जनक के पास धनुष है और एक धनुष कंस के पास है। जनक कहते मेरा धनुष टूट जाए और कंस कहता ना टूटे। कंस कहता जो ज्ञानी होता है अहम को तोड़ने का प्रयास करता है, धनुष क्या है, अज्ञान। ज्ञानी कहता है धनुष रूपी अहंकार टूट जाए और अज्ञानी बोलता सुरक्षित रहे। संक्षेप, ये टूटेगा कैसे, जनक के यहां पर ये बेटियां हैं, कौन बेटियों पे ये बेटियां क्यों होती हैं, आप चाहते बेटा होती हैं बेटियां, ये क्यों होती है, इसलिए होती है, यहां पर बताया गया है। जनक जी महाराज ज्ञान में बड़े प्रौढ़ हैं और कभी कभी अहंकार की झलक आ जाती है,
जो कहा कि अब तेरे को बेटी दे दूंगा जो तेरा अपने आप बीपी डाउन हो जाएगा, अब सबको हाथ जोड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आगे बढ़ो, अच्छी बात थी। भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा आगे चल करके कि एक धोबी मिलता है। कौन मिलता है? जब भगवान को धोबी मिला, अति संक्षेप, भगवान को धोबी मिला, भगवान ने कहा मेरे साथ ग्वाल बाल आए गांव से, अब राजा के पास जाना है तो तेरे राजा की प्रतिष्ठा बनेगी, ऐसे इन कपड़ों में जाएंगे फटे पुराणों में तो तेरी राजा की शोभा नहीं बनेगी, इसलिए भाई तू कौन है? बोले मैं राजा का धोबी हूं। तो कपड़े कुछ इनको दे दे। बोले तेरी औकात ऐसा बोलने की? राजघराने कपड़े हैं, बच्चों कपड़े, राजाओं कपड़े, और तू पहनने की इच्छा रखता है? फटकारा, बहुत कुछ फटकारा। देखो भाई बुरा मत बोलो, गीता में कहा है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहेतम यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाग्भयम् तप उच्यते। वाणी को बहुत ध्यान से बोलो, संभल के बोलो। क्यों? अरे शब्द शब्द में भेद है और शब्द शब्द में दाव। अरे भैया शब्द शब्द में भेद है और उस शब्द शब्द में दाव। एक शब्द शीतल करें और एक शब्द करे घाव। शब्द ही तो है, घाव कर गया। अब शब्द बोला भगवान कृष्ण को, अरे कमार कहीं का गांव का रहने वाला ऐसी अपेक्षा रखता है? भगवान ने कहा तू ठीक नहीं बोल रहा है, संभल के बोल, होश में बोल। अरे क्या होश में बोलूं, तुम इसी के लायक हो। अरे वाणी ठीक बोल, ठीक है बेचारा ऐसा गांव का रहने वाला तो ऐसा क्यों बोलता है? जहां जिसको जन्म मिलना था मिल गया, बड़ी अच्छी बात। अरे काना से काना कहो, एक आंख वाली से, अरे काना से काना कहो तो काना जावे रूठ। और भैया धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। काना को काना बोलोगे नाराज हो जाएगा, प्यार से बोलो आंख की बड़ी कीमत है, ये तुम्हारी आंख कैसे चली गई भैया, दुनिया इतनी प्यारी है खूबसूरत है, आज मैंने आपकी बंबई देखी। क्या बात, राजेश दिखाने ले गए, बड़ी प्यारी बंबई आपकी, बहुत बढ़िया बंबई, आंख के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर की प्रकृति है, छटा है, ये बिना आंख के नहीं देख सकते हैं, बिना आंख के नहीं। काना से काना कहो काना जावे रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। बड़े प्यार से बता देगा, ऐसे ऐसे कर रहा था फूट गई है। धोबी ने एम तेम किया, भगवान ने हाथ में तलवार की भावना की, गला काटा, धड़ाम से गिर गया, मर गया। आगे भगवान को दर्जी मिला, कौन मिला? दर्जी, पोशाक बना के रखी, भगवान को प्रदान की। ध्यान देना, दर्जी के पास एक कैंची होती है, कैंची पैरों में रखता है, एक सुई सिलने वाली होती है, वो सुई को कहां रखा? ध्यान देना, दर्जी सुई को कहां रखता है? टोपी में। कहां लगाता है? टोपी में लगाता है। कैंची को पैरों में रखता है। ध्यान रखना मेरी बात को, समझना, कैंची पैरों में होती है। भैया क्यों? बोले काटती है। सुई टोपी में क्यों लगाता दर्जी? वो जोड़ती है। जोड़ोगे माथे पे रखे जाओगे, समाज को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कैंची की तरह, समझ लो। वृंदावन बिहारी लाल की, आगे माली मिलता है, माला पहनाई, आगे कोजा मिलती है, चंदन लगाया, टेढ़ी बेड़ी है। भगवान ने कहा ऐसी कैसे हो गई? बोले मैं जन्म से ही हूं, आ मेरे पास आ। भगवान ने अपने पैर से पैर दबाया और थोड़ी में यूं ठेल मारी तो बिल्कुल सीधी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक कर दिया। इसी प्रकार से आगे धनुष यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ में पहुंचे भगवान, उस धनुष को तोड़ के फेंक दिया, लोग भागे, कंस को बताया है, सोचा है ऐसे नहीं मरेगा, अब तो अंतिम तरीका है, अखाड़ा खुदवाओ, तैयारी करो, मुष्टि और चाणू से युद्ध कराओ, अपने आप मर जाएगा। गेट पे कोबला पीड़ हाथी खड़ा कराया गया, मुष्टि चाणू आया है,
कवल्या पीठ को शराब पिला के रखी, भगवान वहां से निकले। उसने संकल्प घुमा के मांगी मारी तो भगवान तो बड़े स्फूर्ति में है, छटक करके भगवान उसकी पूछ पकड़ी और घुमा के चूहे की तरह जमीन मारी, मर गया। अखाड़े में पहुंचे, मुष्टि और चारुण ताल ठोक रहे थे, भगवान दोनों से भिड़े, बलराम कृष्ण एक ऐसे भिड़ गए, मुष्टि चारुण दोनों को मार दिया। भगवान ने छलांग लगाई, जहां कंस बैठा था पकड़ा उसका जूड़ा और नीचे धक्का मार के अखाड़े में गिराया। कंस बोला लगती है लगती है, आज याद आया, जब तूने मेरे भाइयों को मारा था तो उनको भी तो लगती थी, तो सोचा तो लगती है, दर्द हो रहा है। तूने जब दर्द की अनुभूति नहीं की तो आज तू दर्द के बारे में कैसे सोच रहा है, तेरे को दंड मिलेगा। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से कंस को खलास किया। वृंदावन बिहारी लाल की अकुल लीला समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की एक भजन फटाफट।
मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरी बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। तेरा जलवा कहां पर नहीं है, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा खुशी ने ही देखा, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा जलवा खुशी ने ही देखा, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे माँ के बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं 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 पीते लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं, हम पीते हैं सत्संग के प्याले, हम पीते हैं सत्संग के प्याले, जो अंगूरों की मदिरा नहीं है। बाके बिहारी समरिया
तेरा जलवा कहां पर नहीं है
हो, तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी, तेरी महिमा भक्तों ने है जानी, तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी,
तेरी महिमा है भक्तों ने जानी,
कन्हैया हो छल छोड़ के जो भजता छलिया,
छोड़ के जो भजता छलिया,
छलिया भी उसी की चाह करता है, छलिया भी उसी
चाह करता है,
दिखलाता उसे छवि की किरणे, दिन रात जो दर्द सहा करता है, दिन
रात जो दर्द सहा करता है,
श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा,
श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा,
कुछ मीठी सी बातें कहा करता है, कुछ मीठी
सी बातें कहा करता है,
जिन आँखों में नीर बहा करता उन्हें आँखों में कृष्ण रहा करता है, उन्हें आँखों में
कृष्ण रहा करता है,
उन्हें आँखों में कृष्ण रहा करता है, उन्हें आँखों में
कृष्ण रहा,
तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी, तेरी महिमा भक्तों ने है जानी, तेरे दर्शन की मैं हूँ दीवानी,
तेरी महिमा भक्तों ने है जानी,
तुझे देखे बिना ओ कन्हैया, तुझे देखे बिना ओ कन्हैया, मेरा जीवन बदलता नहीं है, देखे बिना ओ कन्हैया, मेरा जीवन बदलता नहीं है, मेरे बाके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी
समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है,
तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा
तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा,
ओ तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा
तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा,
बाके बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य कथाओं को श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित तन्मय हैं, भक्ति का आनंद, भक्ति के सागर में, अथाह सागर में गोते खा रहे हैं, ऐसी रसानुभूति की उपलब्धि हो रही है जो अपने में एक अनूठी है। सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया गुरुदेव कृपा करें, आपने बहुत अच्छा मुझे अक्रूर का प्रसंग बतलाया। भगवान जो भगवान गोकुल से मथुरा पहुंच गए, वसुदेव देवकी की बेड़ियों को तोड़ दिया। कंस के मरने के बाद सारे दायित्व कृष्ण को दे दिए गए और उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। ध्यान देना, यदि भगवान चाहते तो गद्दी पर बैठ सकते थे। हमारी विशेषता है, हमारे सनातन की, हमारे धर्म की, मेरे सनातन धर्म में हड़पने की, पूर्व की बातें कह रहा हूं, हड़पने की बात नहीं है। इतिहास को देखिए, आज हम इतिहासों से बहुत हट गए हैं, शास्त्रों से बहुत हट गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। आज समस्याओं का कारण, मुश्किल मुसीबतों का कारण, देश में एक परिस्थिति स्थिति ऐसी आ गई, इसका मात्र एक यही कारण है कि हम भटक गए। भगवान कृष्ण चाहते तो गद्दी पर बैठ सकते थे। कंस को मार दिया है, उग्रसेन जी एकदम वृद्ध हैं, राम जी चाहते, ध्यान देना, राम जी चाहते तो लंका के राजा बन सकते थे। रावण को मार दिया, असुरों का संहार कर दिया, राम जी ने असुरों का संहार कर दिया, लंका के राजा बन सकते थे, अधिकार था बनने का, लेकिन राम जी ने रावण को मारने के बाद लंका का राज्य नहीं लिया। कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारने के बाद राज्य नहीं लिया। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। भगवान ने विचार किया, ये अधिकार मेरा नहीं है। इस गद्दी पर उग्रसेन जी बैठे थे, इस अहंकारी ने, पद की लोलुपता को रखने वाले, पद के मद में उन्मत्त, पद की लोलुपता को रखने वाले इस कंस ने अपने पिता को जबरदस्ती हटाया, धक्का मारा, हटा करके जबरदस्ती गद्दी पर बैठा। अधिकारी उग्रसेन जी हैं। उग्रसेन ने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे में क्षमता नहीं है। बोले, नहीं, गद्दी पर आप ही बैठेंगे, व्यवस्था मैं संभालूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यवस्था मैं संभालूंगा। भगवान गोकुल से अब मथुरा पहुंच गए। कहां पहुंच गए भैया? मथुरा और गोकुल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वहां की आम हवा में अंतर है गोकुल और मथुरा में, वहां के रहन सहन में अंतर है, वहां के परिवेश में अंतर है, वहां के वातावरण में अंतर है, वहां की वेशभूषा में अंतर है। शहर और गांव में बहुत अंतर होता है, शहर और गांव में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। आज भगवान श्याम सुंदर गोकुल से, ध्यान देना, गोकुल से मथुरा में आए हैं, और भगवान ने महसूस किया, ये अनुभव किया कि जितना हमको गांव में प्रेम मिल रहा था, इतना प्रेम शहर में। ध्यान देना, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। भगवान कहते हैं कि हमें जो एक गांव का गमार प्यार दे सकता है, वो शहर का पढ़ा लिखा नहीं दे सकता। क्योंकि प्यार तो, ध्यान देना, प्यार चीज बुद्धि की नहीं है, प्रेम चीज बुद्धि की नहीं है, प्रेम चीज तो हृदय की है, प्रेम चीज हृदय की है। और हृदय एक गमार में भी हो सकता है। पढ़े लिखे की बुद्धि ननु नचमे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं जानते? ननु नच, हमारे शास्त्रों में ननु और नच, ननु प्रश्न, नच उत्तर। ध्यान देना, संक्षेप कह रहा हूं, बहुत संक्षेप। कभी स्वाध्याय का अवसर आएगा, यदि भगवान कृपा करेंगे
और मौका ऐसा कोई आया तो उस स्वाध्याय के अवसर पर मैं कभी आपको इस ननु और नच का उत्तर अच्छा दे पाऊंगा। आप लोग याद रखना और प्रश्न करना कि महाराज जी आपने भागवत सप्ताह में ननु और नच की बात कही थी, वो क्या है, तब मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी मौका ही नहीं है। क्या ननु है और क्या नच है, ये शास्त्रों की उलझी हुई ग्रंथियां हैं। सुनो ध्यान से। सच्चिदानंद भगवान की, भगवान ने कहा अरे मैं गोकुल में था तो गोकुल के लोग, गोकुल के ग्वाल बाल, गोकुल के ब्रजबाल, गोकुल की गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं और मेरी मैया इतना प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी। अरे जब से मथुरा में आया हूं ऊंचा सा सिंहासन लगा दिया है, उसे बिठाल देते हैं, बढ़िया सा सुंदर तखत दिया है, मखमली उस पर चद्दर बिछी है, ऊंचा सा गड्ढा लगा है उस पर लिटा देते हैं, 56 भोग लाकर के प्रस्तुत कर देते हैं, कोई खाने तक की नहीं कहता है। भगवान ने कहा मथुरा है तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती, मैं क्या करूं, लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पेंट शर्ट में घूमते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। हमारे गांव के गमार ग्वाल फटी धोती फटा कुर्ता फटी टोपी, पर दिल उनका बिल्कुल सजा हुआ है, हृदय उनका बिल्कुल सजा हुआ है, इतने उनके अंदर दिलों में करुणा है। धोती फटी चलेगी, कुर्ता फटा चलेगा, टोपी फटी चलेगी, पर दिल फटा नहीं चलेगा। आज शहरों में पढ़े लिखे लोगों में लोगों के दिल फट गए हैं, कुर्ते चमकते हुए होते हैं, कपड़े दमकते हुए होते हैं, पूरी ताकत कपड़ों पे लगा दी गई है, दिल पर नहीं, विचार पर नहीं, निष्ठा पर नहीं, भक्ति पर नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अरे कहां गोकुल और कहां मथुरा, गोकुल की नगरी का, गोकुल का हर हर ब्रजबाल ग्वाल गोपांगना हमको इतना प्रेम करती थी, हम भुलाने पर भी उस प्यार को भुला नहीं सकते हैं। जब मेरी मैया मुझे खिलाने आती थी तो मेरी मैया ग्रास को लेती थी और मेरे मुख में देती थी, जब मेरी मैया यूं करती थी मैं मुख यूं कर लेता था, मैया इधर देती थी ग्रास तो मैं मुख इधर कर लेता था, जब तक मेरी मैया 10 बार प्रयास न करे तो मैं एक ग्रास भी नहीं खाता था। कितना प्यार मैया का था, कितना प्यार मेरे ग्वालों का था, कितना प्यार मेरे ब्रजवालों का था, कितना प्यार मेरी गोपियों का था, कितना प्यार मेरी राधा का था। भगवान गोकुल के प्यार को, गोकुल की भक्ति को, गोकुल की सहजता को, गोकुल की सरलता को, गोकुल की सौम्यता को आज अभाव में देख रहे हैं। भगवान कहते हैं सोने का थाल जरूर है, चांदी की कटोरियां जरूर हैं, चांदी का चम्मच जरूर है, चांदी का गिलास जरूर है, लेकिन इस चम्मच में, इस चांदी की चम्मच में, सोने की थाली में साज श्रृंगार तो है, ध्यान देना, साज श्रृंगार तो है पर भाव नहीं है, और जहां भाव नहीं होता है मैं खाता नहीं, ध्यान देना। भगवान से भाव पूर्वक खिलाओ, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, भाव है कहीं तो गुंजाइश है मन में, तभी तो सोने के थाल में भोजन परोसा है, ध्यान देना। भगवान ने आपको संपत्ति दी है, आपको वैभव दुआ है, आपको नाना प्रकार के भगवान ने साधन दिए हैं, तो भगवान का साधन से सत्कार जरूर करो, लेकिन वो साधन ही केवल सत्कार के माध्यम बन के न रहें, उन साधनों के साथ में तुम्हारा प्यार भी उनके साथ परोसा जाना चाहिए। थाली परोसती, थाली दे दी और थाली के साथ प्यार नहीं है तो भगवान बोलते मुझे वो
भोजन भाता नहीं है। मैं क्या करूं बोलो, सब बोलो तो कहूंगा उसे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक घंटे से कम प्रसंग नहीं है रही, मुझे भाव आ रहा है और हम भाव में आ गए तो आप चौपाटी पर जो समुद्र बह रहा है वहां पहुंच जाओगे, वैसे ही लहरें यहां पर आ जाएंगी। अगला कार्यक्रम हमारा तैयार है, आप देख रहे हैं, हम उसको देखते हुए अपने दिल को दबाएंगे। जैसा मैंने सवेरे कहा था, जीव गोस्वामी ने अपने भाव को रोका, क्या स्थिति हुई कि पत्ता गिरा और जल गया। ये प्रेमाग्नि बड़ी विचित्र होती, विलक्षण होती है, बड़ी विलक्षण होती है। आइए, समय की मर्यादा है, पालन करने का प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। आगे कन्हैया के हाथ है, मेरे वश में नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनो दास, भगवान श्याम सुंदर गोकुल में बैठे हैं और गोकुल मथुरा में बैठे हैं और भगवान को गोकुल का स्मरण हुआ, मैया को याद किया, ग्वाल बाल ब्रज वालों को याद किया। भगवान ने याद करके ऐसी तरंग आई भगवान के अंदर, उस प्यार की तरंग में भगवान बह गए उतर करके। ध्यान देना, ये जो प्रसंग है ना उद्धव चरित्र, ये क्या आपको मालूम है, ये उद्धव चरित्र ज्ञान और भक्ति की टकराहट है, ये ज्ञान और भक्ति का कलह है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ भक्ति है, और दोनों का संघर्ष हो रहा है। ज्ञान का प्रतीक उद्धव जी हैं और भक्ति का प्रतीक गोपिकाएं हैं, गोपिकाएं। और उद्धव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान देना, बहुत प्यार से बात को सुनना, बहुत प्यार से। जब तक ज्ञान भक्ति दोनों नहीं मिलेंगे, समन्वय नहीं होगा। मैं संभाल लिया अपने को, इसलिए यहां पर आ गया हूं, बात को मोड़ दिया, इसलिए ज्ञान में आ जाऊं। ज्ञान में खोपड़ी चलती है और भक्ति में दिल चलता है। दिल में उतर जाऊंगा तो कुछ और से और ही हो जाऊंगा। हम मस्तिष्क में आ गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी बात। ये भैया ज्ञान और उपासना जब तक समन्वित नहीं होंगे, इनका समन्वय नहीं होगा, तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। उद्धव अपने ज्ञान को लेकर के बैठे रहे, पर भगवान ने विचार किया, मेरा उद्धव मुझे बहुत प्रिय है। हम नहीं चाहते हैं कि एक केवल ज्ञानी बनके जीता रहे। यदि ज्ञानी बनकर के जीता रहेगा, इसको भक्ति का पुट नहीं मिलेगा, तो कभी मेरे वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाएगा बिना भक्ति के पुट को पुट के मिले। ध्यान देना, कई भक्त, प्रमाण दूंगा अभी, कई भक्त ज्ञान को श्रेय मानते हैं तो कोई भक्ति को श्रेय मानता है। यहां श्रीधर जी महाराज लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों ब्रह्म जी रहे हैं, दोनों भूल में हैं, दोनों भूल में हैं। उद्धव ज्ञानी की ध्वजा है, एक ज्ञान की पताका है और एक भक्ति की प्रतिमूर्ति है। ध्यान देना, एक भक्ति की प्रतिमूर्ति है, गोपिकाएं भक्ति की प्रतिमूर्ति है, और उद्धव जी ज्ञान की ध्वजा। ध्वजा बहुत ऊंची होती है। भगवान ने चिंतन किया, भगवान ने विचार किया, आज यदि भगवान प्रयास कर रहे किसी भी प्रकार से इस उद्धव के ज्ञान में थोड़ा प्रेम का पुट लगना चाहिए, भक्ति का पुट लगना चाहिए, नहीं तो वरना मेरे साथ रहकर के भी मेरे को नहीं जान पाएगा, मुझे नहीं पा पाएगा, मेरा सखा होने पर भी मुझे नहीं पा पाएगा। मुझे पाने का तरीका मात्र ही है कि जब तक इसको पुट भक्ति का नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होने वाला है। ध्यान देना,
अकेला ज्ञान पंगु है और अकेली भक्ति अंधी है।
सुनो ध्यान से,
अकेली भक्ति बिना ज्ञान के अंधी है और अकेला ज्ञान बिना भक्ति के पंगु है। अंधा और पंगु का तालमेल होगा तभी तो चल पाएंगे। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। अंध पंगुवत न्याये न, जब अंधा और पंगु दोनों मिल जाते हैं, अंधे के कंधे पर पंगु बैठ ले तो गंधे पर पहुंच जाता है यथास्थान, इसके बिना मिले नहीं। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। और स्पष्ट करूं, सुनो और स्पष्ट करता हूं, आपका घरेलू उदाहरण देता हूं। घर में आपने परात में आटा डाला है, पंखा तेजी से चल रहा है, आटा सूखा है, पंखा चल रहा है, आटा सूखा है, उड़ जाएगा। ये उड़े नहीं, इसलिए इस आटे में पानी डाल दो। क्या डाल दो माताओं? पानी डाल दो। क्या डाल दो? पानी डाल दोगे तो फिर आटा उड़ेगा। ज्ञान कई बार उड़ जाता है, ज्ञान अवस्थित नहीं रहता है, तो इसलिए भक्ति का पानी डालो। क्या करोगे? भक्ति का, समझो, भक्ति का इसमें पानी डालोगे ज्ञान में, तो यह आटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गूंथ दिया जाएगा, गूंद जाएगा, समन्वय हो जाएगा। जल पानी में मिल गया, पानी जल में मिल गया, अब रोटी आराम से बन सकती है। विषय की स्पष्टता के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया है। ज्ञान भक्ति दोनों का सामंजस्य, समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि समन्वय नहीं होगा, वेदांत के सिद्धांत से देख लो, ध्यान देना, वेदांत के सिद्धांत से देख लो, चाहे भक्ति के सिद्धांत से देख लो, दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी। समन्वय हो जाएगा तो मसला हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। समन्वय होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। शिव भगवान ने सोचा, अरे मेरे उद्धव, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, और तुम उड़ जाओ हवा में, उड़ जाओ, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आप उड़ जाएं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में भक्ति का पानी जरूर पड़े, जरूर पड़े। भगवान तो लीला कर रहे हैं, देखिए भगवान की हर लीला का कोई न कोई रहस्य है, रहस्य है। भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को गोकुल क्यों भेजा, ये समझने की बात है। हर वक्ता आपके बातें नहीं सुना सकता, बता सकता, इन रहस्यों को नहीं खोल सकता है। भगवान ने उद्धव को गोकुल क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि इसका ज्ञान सूखा है, इसके ज्ञान में पानी नहीं है, भक्ति से समन्वित नहीं है। भगवान ने कहा शायद ये गोकुल जाएगा तो इसके ज्ञान में पानी आ जाएगा, भक्ति पड़ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। भगवान ऐसा ही करते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर, नंदनंदन, मुरली मनोहर अपने उस प्यार को याद करते हैं और कमरे से निकले, सामने जमुना मैया है। जमुना मैया में जो प्रवेश किया, ध्यान देना, एक छोटा सा भाव कहूंगा है, जो जमुना मैया में अंदर गए, जमुना मैया में जाते ही एक उधर से फूल प्रवाहित होके आ रहा था, गुलाब का फूल, ध्यान देना, गुलाब का फूल प्रवाहित होते हुए आ रहा था। जब वो भगवान श्याम सुंदर से संस्पर्श उसका हुआ, उस पुष्प का, जब संस्पर्श हुआ उस पुष्प का, संस्पर्श होते ही भगवान श्याम सुंदर को अनुभूति राधा जी की हुई। लगता है इस संस्पर्श है, ऐसा संस्पर्श राधा का होता था। उस फूल को राशेश्वरी राधा जी ने, राशेश्वरी राधा जी ने जमुना में प्रवाहित किया था। हे श्याम सुंदर, जब से आप गए हैं, आपके जाने के बाद में हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या अवस्था है, हमारे सब ग्वाल बाल ब्रजबाल गोपांगना यशोदा मैया नंद बाबा की क्या स्थिति है। हम सब किस ब्रह में डूब रहे हैं, हम किस ब्रह की अग्नि में जल रहे हैं, हम तुमको नहीं बता रहे। हम कितनी वेदना, हम कितनी वेदना में, हम कितनी वेदना में है, हम कितने दर्द में है, हम आपको नहीं बता सकते। ध्यान देना, प्रेम में प्रेमी स्वयं दर्द सहन कर सकता है,
पर अपने प्रिय को दुख देना नहीं चाहता है। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही भक्ति है। भक्त कष्ट को सहन करे, मेरे भगवान को कोई तकलीफ न हो। प्रेमी मेरा ठीक रहे, हम जिसे प्रेम करते हैं हमें दुख आए, हमें कष्ट आए, कोई बात नहीं। ये भाव राधा जी ने कहा। हम इस संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे, हाथ को फूल में लिए हुई हैं और फूल से कहा, ए मेरे पुष्प, ए गुलाब के पुष्प, जाओ। पुष्प लिया, यमुना में छोड़ा है, बहते 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 संयोग ऐसा बना, उधर से भगवान कृष्ण आए, जमुना में आचमन करने के लिए उधर से पुष्प आया, भगवान से टकराया, भगवान को संस्पर्श हुआ, संस्पर्श हुआ, तत्क्षण उसी क्षण वो समझ गए कि ये पुष्प राधा जी का भेजा हुआ है। संस्पर्श हुआ, उस राधा जी ने एक अपनी सूचना भेजी है पुष्प के माध्यम से, सुनो ध्यान से, सूचना भेजी है फूल के माध्यम से। और राधा जी ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, राधा जी ने फूल के माध्यम से कहा है कि कहना प्यार हृदय का उनसे, अरे कहना प्यार हृदय का उनसे, पर अंदर की पीर न कहना, कहना प्यार हृदय का उनसे, पर अंदर की पीर न कहना, कहना तेरी प्यारी राधे नित्य नहाने आ जाती है, कहना तेरी प्यारी राधे नित्य नहाने आ जाती है। जमुना आप जा रही हो ना, कह देना, शाम को बोलना, कहना तेरी प्यारी राधे नित्य नहाने आ जाती है, और तेरे कर की छुई गगरिया, तेरे कर की छुई मटकिया, अपने कर भर ले जाती है, अरे अपने कर भर ले जाती है, किंतु किंतु तुझको कितना दे जाती है, निज नैनों का नीर न कहना, निज नैनों का नीर न कहना। हे पुष्प ये जाके बता देना, पर ये बिल्कुल नहीं कह देना, ये बिल्कुल नहीं कह देना। क्या नहीं कह देना, ये नहीं कह देना, कहना प्यारी राधा रानी नित्य नहाने आ जाती है, भरता कितना पात्र धरा पर, पात्र कितना भरता है, मटकी लेकर के आई है और जल भर करके ले जा रही है, पर उस पात्र में जल कितना भरता है, ये नहीं कहना, क्योंकि आप में वो तो खोई हुई है, आप में वो तो लीन है, उसे बोध ही नहीं है कि घड़ा भरा है कि नहीं भरा है। भगवती राजेश्वरी राधा रानी इतनी इतनी विभोल हैं, उस पुष्प को संस्पर्श करके यमुना में प्रवाहित करती हैं। हे इमने जाकर के बोलना, कहना राधे तेरे तट पे, अरे कहना राधा तेरे तट पे मंगल दीप जला जाती है, कहना राधा तेरे तट पे मंगल दीप जला जाती है, आएंगे दिन दो ही चार में मैया को समझा जाती है, किंतु निराशा के आशा में डूबा जाता तीर न कहना, डूबा जाता तीर न कहना, कहना प्यार हृदय का उनसे पर अंदर की पीर न कहना। जब से आप गए हैं मेरे को कितनी बड़ी वेदना है, दर्द है, ये बिल्कुल नहीं बता देना, ये बिल्कुल नहीं बता देना। हमारा प्रियतम, हमारा प्रिय यदि मेरे दुख को देख करके दुखी हो जाएगा तो हम अपराधी हो जाएंगे। ये प्रेम है, क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से,
अरे दोनों मोर प्रेम पलता है।
एक बढ़िया बात बताऊं कि प्रेम हमेशा उभयात्मक होता है, उभयात्मक, एक पक्षी नहीं, मोह एक पक्षी होता है, मोह एक पक्षी होता है पर प्रेम उभयात्मक होता, दोनों तरफ होता है।
अरे दोनों ओर प्रेम पलता, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। अरे दोनों ओर प्रेम पलता, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है।
किसी ने देखा दीपक जल रहा है, देखने वाले ने बोला अरे पतंगा जला दिया। दीपक ने कहा भैया ऐसा ऐसा क्यों देख रहा है?
बस बात इतनी है कि पतंगा जल्दी जल गया और मैं धीरे 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 जलता हूं, धीरे धीरे जलता हूं। प्रेम उभयात्मक है। मैं एक बार कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी सी बात आई, बड़ी प्यारी बात आई।
लक्ष्मण की पत्नी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है और सोच रही है कि हे लक्ष्मण जी, आप तो राम जी गए सीता को ले गए, आप अकेले गए, मेरे पास कोई नहीं है, शोकाकुल से युक्त हैं। अशोक के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और कहने लगी
ए अशोक मैं आई ससोक तेले तले,
ए अशोक मैं तेरे नीचे आई हूँ, तेरा नाम अशोक है पर मैं सशोक हूँ, शोक से युक्त हूँ,
मैं शोक से युक्त हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की नहीं कहता, आगे आओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
ऐसा भाव उर्मिला ने अपना व्यक्त किया, समय जवाब देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आगे बढ़िए, सुनो बड़े प्रेम से। इधर भगवान श्याम सुंदर नन्न नन्न मुरली मनोहर की लीला बड़ी विलक्षण है। भगवान ने सोचा मेरे उद्धव को हमने परिपूर्ण करना है, संसार में इसको नहीं छोड़ना है, गर्त में नहीं छोड़ना है। भगवान जिसे अपना बना लेता है उसका कल्याण करता है। भगवान ने कहा उद्धव मैंने तेरा कल्याण करना है, भगवान ने उद्धव से, भगवान रोने लगे, सज्जा पर बैठे हैं, आंसू गिरे उद्धव के शरीर पर, गरम गरम कहां से आ रहे, अरे ऊपर से आ रहे, कहां से आए, ऊपर से आए। भगवान रो रहे हैं, दौड़ के उद्धव जी गए, भैया क्यों रो रहे हो, कृष्ण क्यों रो रहे हो, मुझे याद आ गई ग्वाल वालों की, ब्रज वालों की। अरे भगवान भी रोता है भक्तों के लिए, यदि भक्त भगवान को रोता है तो भगवान भक्त को रोता है, दोनों एक दूसरे के प्रति उभयात्मक प्रेम है ना, उभयात्मक प्रेम है, दोनों रो रहे भगवान भी भक्त भी। उद्धव बोले अच्छा ऐसा है भैया, रो मत, आपकी प्रिय गोपिकाएं ब्रजगानाएं ग्वाल बाल आपको याद करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं मुझे कुछ पत्र लिख के दीजिए, कुछ सूचना लिख के दीजिए, जो जैसा प्यारा है वैसा उनको पत्र लिख करके दो और हम इस पत्र को लेकर के जाते हैं और उनको देते हैं, सब ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, ए उद्धव इस प्यार को तू पन्नों में लिखना चाहता है, ये प्यार पन्नों का ही नहीं है, प्यार कभी लेखने का विषय बन ही नहीं सकता है, वो हृदय की वस्तु लेखनी में कैसे आ सकती है, लेखनी से में तो बुद्धि की चीज आती है, दिल की बात नहीं, तू इसको लेखनी में लिखना चाहता है, नहीं लिख सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन फिर भी संक्षेप कुछ पत्र दिए भगवान कि उन पत्रों को लेकर के उद्धव चलने लगा। अरे रुक रुक जल्दी ना कर, हे उद्धव एक कमली ले जा, तुझे कोई पहचानेगा नहीं गोकुल में। चलने लगे, बोले और रुक अभी बंसी भी ले जा, और रुक खड़ाऊ भी ले जा, ए पीतांबरी भी ले जा, ए रथ भी ले जा। भगवान ने सब कुछ दे दिया, उद्धव गए गोकुल में पहुंच गए, वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप में गोपिकाएं इकट्ठी होती हैं, ब्रजांगनाएं इकट्ठी होती हैं,
सबको सामूहिक समाचार दे देते हैं, सबको सांत्वना देते हैं, जिसके जो पत्र थे उनको थमा दिए। अंत में वो आए, आओ आगे बढ़ गया हूं मैं। अब पहुंच गई सखियां गोपांगनाएं राधा जी की लाश पास लाई निकुंज में। एक सघन निकुंज है, उस निकुंज में राशेश्वरी राधा जी के पास आई। जब राधा जी के पास पहुंचे, भगवान ने इच्छा की थी कि उद्धव आएगा, ये ठीक ठाक होकर के आएगा। श्री भगवान की जैसी प्रेरणा हुई, राशेश्वरी राधा जी ने क्या देखा, वो सखियां ले गई, ये उद्धव जी आए हैं। कौन आए? उद्धव जी आए हैं। राशेश्वरी राधा जी ने जब उद्धव का नाम सुना तो राशेश्वरी राधा जी क्या कहने लगी, ध्यान देना। भागवत का भ्रमर गीत बड़ा मार्मिक गीत है। क्या भ्रमर गीत? बड़ा मार्मिक गीत है। भ्रमर गीत में एक भ्रमर आता है, सुनना था से। एक भ्रमर आया है, कभी उस कुसुम पर, कभी उस कली पर, कभी उसी फूल पर बैठता है। राशेश्वरी ने कहा ऐसे ही जैसे एक काला है, ऐसे ही वो भी कन्हैया भी काला था। जैसे कभी इस कली पर, कभी उस कली पर जाता है, ऐसे ही कन्हैया कभी इस गोपी के पास, कभी उस गोपी के पास, एक के पास रहता ही नहीं था। ये भी काला, वो भी काला, ये भी काला, वो भी काला, इसलिए मैं कालों से प्यार नहीं करूंगी। राधा बोली, अजी काले सबई बुरे, एक तो काले बे मैं देखे, अरे कोयल के सुतुका गा पाले, हसी हसी कंठ लगायो, उड़ने फिरने चलने लागे, कुल अपने को धाये, उधो सब कारे अजमाए। हमने सारे कार्यों को देख लिया है। उधो जी राधा का पत्र लिए खड़े हैं। राशेश्वरी राधा जी उस भौरे को देख करके उपदेश देने लगी। अरे एक भौरा आया, और एक भौरा आया चंपा के फूल पर बैठ गया, और जब चंपा के फूल पर बैठा तो राशेश्वरी राधा जी ने भौरे के माध्यम से अपने दिल की बात कहलाई। क्या कहा? चंपा तुझ में बहुत गुण, भौरा कह रहा है कि चंपा तुझ में बहुत गुण, रूप रंग और बास, अरे चंपा तुझ में बहुत गुण, रूप रंग अरुबास, अब गुण तुझ में ये कहे भ्रमर न आवे पास। हे चंपा, तू देखने बहुत सुंदर लगती है, सुरभि तेरे बहुत अच्छी है, पर तेरे बुराई एक ही है। क्या बुराई? कि भ्रमर न आवे पास। भौरा नहीं टिक सकता, ध्यान देना। चंपा के फूल में इतनी अधिक सुगंधि होती है कि चंपा के फूल की सुगंधि को भौरा सहन नहीं कर सकता। इतनी चंपा के फूल ने उत्तर दिया, उत्तर दिया, अरे भ्रमर मुझ में बहुत गुण, रूप रंग अरुबाश, अरे गली गली के मीत को कौन बिठावे पास। अरे भौरा, तू कभी इस कली पर, उस कली पर जाता है, ऐसे से प्रीति नहीं करती हूं। ए राशेश्वरी राधा जी की तरफ से भौरा को माध्यम ब्याज बना करके ये उत्तर दिया गया। भगवान सुनो ध्यान से, भगवान श्याम सुंदर की प्रेरणा थी कि उद्धव संभल के आए, बन के आए, सुधर के आए, अच्छे होकर के आए। श्री राधा जी ने उपदेश देना शुरू किया, पत्र दिया, राशेश्वरी जी ये पत्र लीजिए, भगवान ने आपको सब भेजा है। राधा जी ने पत्र लिया और प्रेम में बह गई, आंसू गिरे, पत्र गीला हो गया, जो लिखा था सारा बह गया, पत्र को भिगा दिया। अब क्या पढ़ोगी? पत्र में क्या लिखा था? उद्धव जी सुनाने लगे, भगवान ने ये पत्र भेजा है, अरे ज्ञान रूपेण परमात्मा सर्वत्र है, यहां पा सकते, वहां पा सकते, कौन सी जगह है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ऐसा ऐसा लंबा लंबा उपदेश दिया। मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, आप उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। राधा जी बोली, मुझे तो लगता नहीं कि आप उनके मित्र होंगे, हम यही देखते हैं, जो भगवान कृष्ण की एक बार छवि चित्र तो को देख लेता है वो पागल हो जाता है, हमको लगता तुमने वो भी नहीं देखा है। राधा जी बोली, अरे चित्र लखान चरित्र सुना, अरे चित्र लखान चरित्र सुना, वह श्यामरी सूरत जाने तो क्या, जिसने कभी रूप निहारा नहीं वो ठाने किसी पे ठाने तो क्या। संक्षेप, अरे जिस मरकट ने इमली ही चखी और स्वाद सुधा पहचाने तो क्या, ऊधो कभी प्रेम किया ही नहीं तू प्रेम किया हो को जाने तो क्या। अरे प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने को, एक बार जो प्रेम कहे पुनर्जन्म नहीं होए। उधो तुम कहते हो हम साथ रहते हैं, मुझे तो लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। संक्षेप, राशेश्वरी जी ने ऐसा भक्ति का संचार प्रेम का संचार आया, उधो ने दर्शन किया, आधे अंग में राशेश्वरी राधा जी हैं और आधे अंग में भगवान कृष्ण हैं, और उधो जी वहीं पर नतमस्तक हो गए, राधा जी के चरणों में गिर गए, और राधा जी के चरणों में गिर करके उधो जी ने कहा कि मैं तो व्यर्थ में अपने ज्ञान में प्रवाहित था, अहम में चूर था, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान का श्रृंगार नहीं हो सकता है, ज्ञान का श्रृंगार ही भक्ति से होता है, ऐसा उधो जी महाराज बोले। यहाँ विवेचन भी आता है, एक श्लोक बांचता हूँ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो उधो बोले, आशाम हो चरण रेणु जी श्याम हम श्याम, और वृंदावन किल्म किल्म बिगुल्म लसौधीना। बहुत अच्छा श्लोक, पूरा नबाज के संक्षेप में उधो ने कहा, यदि मेरा अंगला कोई जन्म हो तो किसी गुल्म लता औषधि और ज्यादा मैं क्या कहूँ, इस गिरिराज का पत्थर बना देना, पर ब्रज से बाहर नहीं भेजना, हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन, ऐसी प्रार्थना की, और प्रार्थना करके गोपियों को नमस्कार किया, गोकुल को नमस्कार किया, और मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा में पहुंच गए, भगवान सामने खड़े थे, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, भगवान ने पूछा, कहो जी कैसे हो, कैसे हो प्रभु, मैं क्या बतलाऊं, मैं कैसा हूँ, कुछ कहते बनता नहीं है। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे हैं, आपका क्या हाल है, क्या हाल पूछते भगवान, मैं आपको क्या बतलाऊं। उधो जी ने बहुत अच्छी बात कही, उधो बोले, हों जो गयो रथ बैठी दयानंद, अरे हों जो गयो रथ बैठी दयानंद, और पहुंचो वहां रजनी मुख बेला, और ब्रह्म की बात कही हमने, अरे ब्रह्म की बात कही हमने, उठी उनके ही प्रेम की रेला, और हम तो गए थे, हम क्यों गए थे, ज्ञान को देने के लिए, लेकिन वहां पर ऐसा भक्ति का रेल, ऐसा भक्ति की बाढ़ आई, ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, हे श्याम सुंदर, मैं उस बाढ़ में बह गया, उस बाढ़ में, हम तो गए उन सिख देन उन्हें, पर हम ही भये चुटिया कट चेला। उधो जी बोले, ऐसा वैसा नहीं, हमें राधा जी ने अपना चेला बना लिया। ध्यान रखना, उधो जी का ये प्रसंग भक्ति से परिपूर्ण है, इसको मन में लाइए। वृंदावन बिहारी लाल की, क्या भजन बोलना है, जैसे आपकी इच्छा, हमारी तो इच्छा है, बोल लो संक्षेप में।
उधो सुधो हे चलो, सुन गोपिन के वैन, ज्ञान बजाई डुम डुमी, और प्रेम बजायो ढो, ये तो प्रेम की बात है योधो, ये तो प्रेम की बात है योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सोते,
यहाँ सर देके होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सोते, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेमी वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनुए रे उदो, प्रेम वालों ने
कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुनुए रे उदो,
यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर झुका फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है
मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की,
जो असल में है मस्ती में डूबे, जिंदगी की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से निराले,
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले,
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो से निराले, जिनके नजरों में श्याम समाया, जिनकी नजरों में श्याम समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में
श्याम समाया, वो नजर फिर तरसती,
ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।
आइए अति संक्षेप, भगवान संदीपनी गुरु के पास गए हैं, शिक्षा को अध्ययन किया है, वहां से लौट आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक चरित्र आइए सुनिए। कंस के मरने के बाद अस्ति और प्राप्ति, ध्यान देना, कंस की दो पत्नियां हैं, कंस मर गया, अस्ति और प्राप्ति उसकी दो पत्नी है। अत संक्षेप में अस्ति आशा, प्राप्ति तृष्णा। इस दोनों, कंस मर जाता है, जीव शरीर को छोड़ के चला जाता है, अत संक्षेप जीव शरीर को छोड़ के चला जाता है, पर आसक्ति और तृष्णा नहीं जाती है। आसक्ति तृष्णा, कंस मर गया पर अस्ति प्राप्ति हैं, ये दोनों पिता जरासंध के पास में जाती हैं। जरासंध ने जब सुना, मथुरा पे चढ़ाई की, संक्षेप में 16 बार चढ़ाई की, 16 बार भगवान ने छलांग लगाई पर्वत के माध्यम से, आसपास में आग लगा दी। जरासंध ने मरा हुआ समझ करके और वो चला गया, भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई समुद्र में और द्वारका की टापू पे तैयारी कर दी, बढ़िया सुंदर सा नगर बनाया, आदेश दिया विश्वकर्मा को कि बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर, जैसी अभी कहीं कारीगरी दिखाई हो वैसा नगर बना के तैयार करो। विश्वकर्मा जी महाराज ने जल के बीच में बहुत सुंदर नगर बनाया। भगवान आए, फिर जरासंध ने भगवान पे चढ़ाई की, काल एवन के माध्यम से काल एवन आया है और भगवान युद्ध को छोड़ करके भाग गई। नाम पड़ा रणछोड़, क्या पड़ा नाम, रणछोड़ भगवान की। रण को छोड़ के भगवान भाग गए, भाग करके जामुचकुंद जी छोए हुए थे, काल एवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, मुचकुंद सोए हुए थे, वहीं भगवान गए, अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया, स्वयं कोने में छुपके खड़े हो गए। कालेबन ने सोचा, ये दौड़ के भाग के आया, थक गया है, लेट गया है, सो गया है, मैं तुझे पहचान लिया, ये पीली पीतांबरी ओढ़े हुए था, ये वही है। आकर के कालेबन ने लात का प्रहार किया, मुचकुंद महाराज सोए हुए थे, मुचकुंद को वरदान मिला था, मानधाता के पुत्र हैं, वरदान था कि जो भी तुझे सोते हुए जगाएगा मुचकुंद, हे ऋषि मुचकुंद, जो तुझे सोते हुए जगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लात मारी, मुचकुंद जग गए और जगते ही जो उनकी आंख की हीट लगी, पड़ते ही काल उन मर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद, भगवान मुचकुंद ने भगवान का दर्शन किया, कहा भगवान ये आपका दिव्य दर्शन हमारी साधना का साफल्यता है, सफलता है, आपने ऐसा मुझे पावन दर्शन दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आए हैं मथुरा में, अब की भगवान ने आकर के जितने ग्वाल बाल ब्रजबाल बार बार ये तंग करता है जरासंध, भगवान ने कहा चलो यहां से नहीं रहना है, सब विधवंशियों को ले गए, द्वारका में पहुंचा दिया, सारे वही रहने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 3-4 कथा मैंने कह दी, आइए भगवान पहुंच गए हैं द्वारका में, इधर थोड़ा समय लेंगे, 5-7 मिनट। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री श्याम सुंदर जी द्वारका में हैं। पहले की प्रक्रिया अब ऐसे ही सुनाऊंगा संक्षेप में। भगवान द्वारका में हैं, इधर पहले की परंपरा होती थी, पहले की परंपरा में शादी विवाह होने की प्रक्रिया थी, या नाई जाता था, या भाट जाते थे, या चारण जाता था, या पंडित जाता था, ये पहले विधान था। ये नाई गया, लड़की को देखा, नाई आया लड़की को देखा, लड़का लड़की देखने का काम नाई करता था, चारण करते थे, भाट करते थे और पुरेत पंडित जी करते थे, इनके हाथ में था, इतिहास बता रहा है। ये प्रक्रिया थी पहले, लड़की को चांस कहां मिलता था। अब वर्तमान युग में ऐसा है ही नहीं, सब बदल गया। नारद जी गए भीष्मक के यहां, राजा भीष्म के यहां पर, और जब भीष्म के पास गए तो भीष्मक राजा के यहां पर नारद जी ने बहुत सुंदर गुणान बात किया भगवान श्याम सुंदर का, रूप लावण्य माधुर्य का उनका गुणान बात किया, सुंदर सा गुणान बात किया। गुणान बात को सुनकर के निश्चय किया रुक्मिणी ने, यदि बरना है तो मैं श्याम को ही भरूंगी, किसी को इनके अलावा वर्ण नहीं करूंगी। इधर रुक्मी उनका भाई है, उसने कहा मैं यदि विवाह करूंगा तो मैं विवाह करूंगा अपने बराबरी का। अरे वो तो भगोड़ा है, पशु चुगाने वाला है, गांव का रहने वाला है, उसे क्या शादी करना। अरे राजा शिष्यपाल से करूंगा, मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, हम भी राजा वो भी राजा, और ग्वाले को मैं अपनी बहन क्यों दूं। इस प्रकार से निर्णय कर लिया। यद्यपि राजा भीष्म की इच्छा थी कि जो ये चाहती है मेरी बेटी वही हो जाए, इसका विरोध किया, कृष्ण के साथ विवाह का विरोध किया। जब विरोध किया, सुनो ध्यान से, विरोध किया, अब रुक्मिणी ने सोचा हम तो दिल से उन्हीं को मान चुकी हूं, हमारे यहां की परंपरा है, ये परंपरा है, जब नारी जब लड़की किसी को दिल से स्वीकार कर ले तो उसके साथ उसको विवाह करना चाहिए। सुनो ध्यान से, वो स्वीकार कर लिया। थोड़ी महाभारत की जरा सी झांकी देखो, गांधारी की जब शादी होने जा रही थी, शादी तय हो गई, गांधारी को बताया कि तेरा पति अंधा है, गांधारी ने कुछ भी निर्लक्ष्य नहीं किया और कहा कि यदि वो अंधा है तो मैं भी आज से आंख पर पट्टी बांधती हूं, इस दुनिया को वो नहीं देखते तो मैं क्यों देखूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, आज की छोकरी होती तो कहती वो अंधा है तो बना रहे, अपनी आंखें क्यों फोड़े। वो स्वीकार करने वाली नहीं थी, जमाना बदल गया, समय बदल गया। गांधारी ने वैसा किया, इधर भगवान श्याम सुंदर का गुण नाम धाम सबका वर्णन सुना, बड़ी प्रसन्न है। अब कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे, देखो बढ़िया बात, सुंदर बात, हमेशा नंद को चाहिए भाभी से बना के रखे। प्रसंग आ रहा है, नंद को चाहिए, नंद समझते होंगे आप लोग ना, समझते हैं ना, ननद जो होती है उसको हमेशा भाभी से बना के रखना चाहिए। आज के जमाने में कुछ ननदें हैं ये भूल कर जाती हैं, मम्मी कुछ लगाती रहती है और इंजन से मरवाती रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बना के रखो, भाभी से बना के रखना चाहिए। रुक्मिणी जी की इतनी प्रीति भाई भाभी में थी, इतना प्रेम भाभी से था, विलक्षण प्रेम था, किससे कहूं दिल की बात, मैं क्या चाहती हूं। भाभी के पास गई, भाभी एक आपसे प्रार्थना करूं। हाँ बोलो 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 बहन, क्या बात है। बात यह है कि मेरे दिल में वो श्याम सुंदर बस गए हैं, वो बांके बिहारी बस गए हैं, वो द्वारकाधीश बस गए हैं, भाई हट करके बैठा है, मान नहीं रहा है, पिता तो राजी है पर भाई की चलती है, मैं क्या करूं। भाभी ने सांत्वना दी, चिंता नहीं करो, आप चाहती वो होगा, कैसे होगा, व्यवस्था मैं करती हूं, व्यवस्था मैं करती हूं। भाभी ने व्यवस्था की, आप ऐसा करो एक पत्र लिखो भगवान श्याम सुंदर के लिए, एक पत्र लिखो। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान के लिए, बहुत अच्छा पत्र लिखा, आपकी भाषा में क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, मैं आत्मा आदमी हूं, आपकी भाषा में उसे क्या बोलते हैं मैं इसमें से उच्चारण नहीं करूंगा, पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र में इतना अच्छा भाव लिखा है। क्या लिखा? एक श्लोक सुना देता हूं। है पांचवा श्लोकों में लिखा गया, वर्णन किया। हे भगवान श्याम सुंदर, हे नंद नंदन मुरली मनोहर, मैंने आपके रूप लावण्य माधुर्य की चर्चा जब नारद जी के द्वारा सुनी, उसी दिन से मैं आपकी बन गई हूँ। आपके जैसा जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि वाणी से बखान नहीं कर सकती हूँ। प्रेम की व्याख्या की, कैसा प्रेम करती हूँ? बोले अजात पक्षा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम मिथा वस्तुतरा क्षुधारता, प्रियम प्रियेम विशितम विशिन्ना, अमनोर बिंदा दिदृक्षते ताम। अभी मेरे भैया, अभी भैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की शादी होने जा रही है। ये शादी का ही प्रसंग चल रहा है, आप घर आइए नहीं, मैं यूं कर देता हूं। चलो, चिट्ठी लिखी, बंद कर दी, भाभी को पकड़ाई, भाभी जी ने पंडित जी को बुलाया, आओ पंडित जी, लो पंडित जी ये पत्र ले जाओ, बहुत जल्दी जाना है, देर नहीं करना है, रास्ते में विश्राम बिल्कुल नहीं, जाओ ये पत्र ले जाओ और द्वारकाधीश को जाके दो, तुरंत ही क्षण दौड़ के जाओ। पंडित जी दौड़े, आचार्य जी गए, भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे गद्दी पर, ये पत्र दिया है रुक्मिणी जी ने। अच्छा, रुक्मिणी मेरे को पत्र भेजा है, अच्छा ऐसा कीजिए ना आप ही पढ़ के सुनाओ। बोले नहीं नहीं, बड़े एकांत में लिखा है, श्रीधर जी महाराज ने श्रीधरी टीका में लिखा है। क्या लिखा है? थोड़ा हिंट करूंगा। रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्तर पत्रिकाम, उस पत्रिका में श्रीधर के शब्द है, पत्र को लिख करके, मुद्रिका को लगा करके, स्टाम्प को लगा करके, बंद करके पंडित को दे दिया है और पत्र को लेकर के भगवान को दिया है। वो पहुंच गए और पहुंच करके पत्र को खोला, संक्षेप में पत्र खोला, वाचा, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे भाव लिखे। नीचे लिखा था नोट, हे श्याम सुंदर, भोजन वहां खाएं तो पानी आके यहां पिए। ये पहले जमाने में चला करता था, अब तो टेलीफोन है, बड़ी कुछ सुविधा है। हे श्याम सुंदर, भोजन वहां करें तो पानी आकर के यहां पिए, इतनी जल्दी में आना, देर नहीं कर देना, सिंह का शिकार सिंगाल नहीं खा जाए, ध्यान रखना। यही वाक्य लिखा है, मैं आपकी हूं। हे श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर, आप बहुत जल्दी करना। भगवान श्याम सुंदर पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ते ही कहा ठीक है पंडित जी, आप बैठो रथ पर, हम ही बैठते हैं। तुरंत उसी क्षण भगवान रथ निकलवाया है, रथ पर बैठ गए हैं, शास्त्री रथ आका है, पंडित जी को बिठा लिया है और पंडित जी को बिठा के खटपट 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 रथ भाग पड़ा है। पत्र में लिखा था कि आप कैसे आओगे, हम भगवती के मंदिर में जाएंगी पूजा करने के लिए, जब पूजा करने जाऊंगी बस इससे बढ़िया कोई तरीका मौका कोई भी नहीं है, हम पूजा करेंगी, पूजा करके निकलेंगी और आप भाई कोने में खड़े रहना, जो मैं निकलूंगी तो आप तुरंत हमको देख लेना और फिर आगे वाला काम तो आपको मालूम ही है। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान ने कहा, संकेत ये भी पढ़ा, बस भगवान ने ऐसा ही किया। रुक्मिणी जी गई है, लिखा है भागवत में, इधर से गई तो पता चलती, ऐसा लिखा भागवत में, पता चलती एक एक पग उठा के, यानी पता चलती, इधर से गई तो पदा चलती, जल्दी जल्दी गई, उधर से पूजा करके निकली, जब पूजा कर रही थी तो खसी माल मूर्त मुस्कानी, मां से प्रार्थना की, मां प्रसन्न हुई, यदि कोई फूल चढ़ाओ और गिर करके आपकी तरफ आए तो समझना काम सिद्ध, माला चढ़ाओ और गिर जाए गले से तो सिद्ध, माला चढ़ाई ऐसी माला खसकी रुक्मिणी के गले में आ गई, रुक्मिणी का काम बन गया, काम बन गया। अब रुक्मिणी जब वहां से निकली सीढ़ियों से, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, भगवान के दिखाई नहीं पड़ रहे, अब क्या करें, इस प्रकाश से अनेक राजा आए हुए हैं, घूंघट निकाला है इतना, अब क्या करें, कैसे देखें, लाज है ना। बड़े ही सरलता पूर्वक बड़ी होशियारी के साथ ऐसे सिर किया तो उनकी कुछ लटें इधर निकल आएंगे। लटों को संभालने के बहाने से रुक्मिणी जी ने ऐसे किया, इधर तो नहीं भगवान श्याम सुंदर कहीं हैं, इधर भी दिखाई नहीं पड़ रहे, थोड़ा यूं सिर किया तो इधर की लटें आ गई बाहर। रुक्मिणी जी ने यूं झटका मारा तो यूं यूं देख लिया, न इधर दिखे न इधर दिखे, लगता कहीं दूर है, तो निगाह मारी वो आ रहे हैं। अब तो भगवती रुक्मिणी जी पदा चलती, चलती नहीं पदा चलत, एक एक पद को धीरे से उठा रही, इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पे कम से कम 5 मिनट लगता है, 1 सेकंड का काम है। पदा चलती दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, इतने में भगवान श्याम सुंदर पास आ गए। जब भगवान श्याम सुंदर पास आ गए, बहुत से सैनिक लगे हुए थे, लिखा भागवत में बड़े सैनिक थे, और शादी के सारे सैनिकों से घिरी हुई थी। जब भगवान आए, वो सैनिक बोले, सिपाही बोले, अरे भैया देख तो, वो दुनिया में बड़े आदमी देखे, बड़े लोगों को देखा, पर ऐसा जैसा विलक्षण मैंने कभी व्यक्ति नहीं देखा। देख क्या बढ़िया इसका मुकुट है, अरे पीतांबर देखती बनती है, कपोलों को देख, इसकी नासिका देख, इसकी स्कंद देख। दूसरा तीसरे से बोला, तीसरा चौथे से बोला, अरे भाई कमाल है, क्या भगवान का रूप है। कोई रूप को देखा, कोई लावण्य को देखा, कोई बंशी को देखा, कोई उनके मुकुट को देखा। अब संभाल कोई रुक्मिणी कर नहीं रहा है, रुक्मिणी के रक्षा के लिए भेजा था, रुक्मिणी को कोई नहीं संभाल रहा है। भगवान ने सोचा ये तो सब ऐसे ही लगे हैं, इशारा किया इधर से घूम के आ जाओ। भगवान ने यूं किया, रुक्मिणी तुरंत वहां से निकली और भगवान के पास जाकर के ऐसे हाथ किया, भगवान ने हाथ पकड़ा तो खींचा, रथ पे बैठाया, रथ पे बैठ करके खटपट खटपट खटपट, घोड़े दौड़े खटपट 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 खटपट, सारे राजा पीछे पीछे, पकड़ो 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 पकड़ो, किधर कहां कैसे। बलराम भी पीछे से आ गए, तुम्हें मालूम था ये जल्दी में गया, कोई चक्कर है सेना को लेकर के। आगे चले रुक्मी वगैरह, शिषपाल वगैरह सभी योद्धा दौड़े। भगवान ने कहा भागते रहो कोई बात नहीं है। संघर्ष हुआ, बहुत से असुरों को मार दिया भगवान ने, राजाओं को धराशायी कर दिया। रुक्मी को पकड़ करके पहिए से बांध लिया, मारने जा रहे थे। रुक्मिणी बोली छोड़ दो भैया है मेरा ना, चल ठीक तुम कहते छोड़ देता हूं, इसका मुंडन करा के छोड़ूंगा। सिर घुटवा दिया, मुंडन करा छोड़ दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मुंडन करा के छोड़ा है। भगवान इस प्रकार से उनको परास्त करके द्वारिका में पहुंच गए हैं। आधे द्वारिका वासी वधु पक्ष से है, आधे द्वारिका वासी वर पक्ष से है, क्यों बात विचारी अकेली है ना, वो अकेली है, उनका तो मर रखना है ना। भगवान कृष्ण बड़े सुलझे हुए हैं, भगवान की नीति बड़ी विचित्र विलक्षण है, आपकी नीति पर बोलूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज विषय आया था मैं अपने को रोक लिया, तुम्हारा विषय आया था, किसी दिन विषय आएगा, कल पक्का आएगा, तब विषय कुछ छूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हमारा प्रकाश बोला महाराज आप राजनीति को बहुत अच्छा बोलने वाले थे, रोकना नहीं चाहिए था उसको, और बोलना चाहिए था, बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने कहा। राजनीति और धर्मनीति और राजकरण, ये 3 चीजें, राजनीति धर्मनीति और राजकरण क्या है, चलो छोड़ो फिर कल बोलेंगे, उधर चला गया तो अभी भाग दूंगा कहीं। वृंदावन में हरिलाल की सुनिए, बड़े प्रेम से सुनिए, भगवान ने रुक्मिणी का मर रखने के लिए आधे द्वारिका वासी वर पक्ष के आधे वधु पक्ष के दोनों इकट्ठे होते हैं, बहुत सुंदर तैयारियां कर रखी शादी की, बहुत अच्छी तैयारी कराई गई। जैसे हमारे प्रेमपुरी आश्रम में हमारे इन ट्रस्टियों ने तैयारी की, बड़ी सुंदर तैयारी की है शादी की, बढ़िया सुंदर तैयारी। अरे जम के ताली बजाओ ना, वो लाना क्यों दे रहे हो। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़े ध्यान से उधर तैयारी हो गई है। और रुक्मिणी जी आती हैं, भगवान श्याम सुंदर विराजमान होते हैं, सभी ने का सत्कार किया और सम्मान किया, चौकी पर बैठाया है और चौकी पर बैठा करके ब्राह्मण लोग विराजते हैं और विराजित करा करके ब्राह्मणों ने सप्त फेरी लामा फेरे कराए हैं और बहुत आनंद आया है, खूब बधाई बोली गई है। आइए अब उस शादी का आप दर्शन करें, बुला लो, हाँ बुला लीजिए, आप उस शादी का, दिव्य शादी का दर्शन करें।
आओ मेरी संखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
जय हो। सत्संग ने मेरी बाती जलाए,
सत्संग में मेरी बाती जलाए,
सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई,
सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई,
उनको जय हो। बोली स्वामी जी महाराज की, उनको बुला के हथेली बात करा दो,
उनको बुला के हथेली बात करा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
हरी बोल हरि की दुल्हन,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम प्यारी की दुल्हन बना दो,
जय हो। पेनु चूड़ी जो कबे हो न टूटे,
पेनु चूड़ी जो कबे हो न टूटे,
ऐसी पेनु चूड़ी जो कबे हो न टूटे,
ऐसी पेनु चूड़ी जो कबे हो न टूटे,
ऐसा बरो दूल्हा जो कबे हो न रूठे,
बरो दूल्हा जो कबे हो न रूठे,
अटली अटली सुहाग।